और ये एस्टैब्लिश हो जाने के बाद में फिर जब भगवान कृष्ण हैं तो ये देवी देवता इत्यादि कौन हैं? पहले तो हम ये जानेंगे कि भगवान वास्तव में साकार हैं या निराकार हैं। इस जगत में कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार हैं, और कुछ लोग भगवान को आकार देते भी हैं तो अनेक प्रकार के रूप में उनको देखते हैं। तो वास्तव में भगवान कैसे हैं, साकार स्वरूप है उनका या निराकार स्वरूप है, तो ये जानेंगे। कहते हैं कि जैसे सूर्य होता है तो सूर्य एक प्लैनेट अर्थ की तरह से हमको दिखता है, एक प्लेट की तरह से दिखता है आकाश में, है ना? तो क्या वो एक प्लेट है, एक व्यक्ति है, या उसकी जो किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं वो उस रूप में है? सो सूर्य को हम कितने स्वरूप में जानते हैं? सूर्य की रोशनी देखते हैं तो कहते हैं सूर्य है, सूर्य को आकाश में एक प्लेट की तरह से देखते हैं तो सूर्य है। शास्त्रों में बताते हैं कि सूर्य एक पर्सनालिटी है जिनका नाम है विवस्वान, और सूर्य एक पदवी है, एक पोजीशन है जो डेमीगॉड्स को दिया जाता है, और ये पदवी को जो संभालते हैं ऐसे 12 पर्सन हैं, 12 पीपल आर देयर हु आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ दिस पोजीशन, और उनको आदित्य कहते हैं, द्वादश आदित्य। सो द्वादश आदित्य मतलब 12 पर्सनालिटीज आर देयर हु आर इन चार्ज इन एवरी मंथ फॉर सप्लाइंग द एनर्जी टू द प्लैनेट्स, टू द ब्रह्मांड। तो अगर हम उनके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करें तो बहुत सारा चीज है। ही इज अपियरिंग एज इम्पर्सनल, ही इज अपियरिंग एज ए प्लेट, एंड ही इज ऑल्सो अपियरिंग एज ए पर्सन। सो दैट डिपेंड्स ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अंडरस्टैंड गॉड। उसी तरह से भगवान कृष्ण जो हैं उनके भी शरीर से एक आभा निकलती है, एक ज्योति प्रकट होती है जिसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। सो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि भगवान एक पर्सन है, उनके चारों तरफ से एक ज्योति निकल रही है। हम लोगों ने कल ईशोपनिषद का 15वां श्लोक रेफर किया था जिसमें भक्त भगवान से प्रार्थना करता है दैट हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहृतम मुखम, आपके शरीर से जो आपकी ज्योति प्रकट हो रही है, आभा प्रकट हो रही है, ये इतनी चकाचौंध है, इतनी तेज है उसमें कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आप कृपा करके उसको हटा लीजिए जिससे सत्य धर्माय दृष्टये, आपको मैं पूरी तरह से देख सकता हूँ। सो भगवान के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र यानी श्रीमद्भागवत में बताते हैं भगवान के बारे में कि जो लोग एब्सोल्यूट ट्रूथ को, परम सत्य को जो जानते हैं, वो बताते हैं कि वदन्ति तत्ववित, तत्ववित माने तत्व को अच्छी तरह से जानने वाले कहते हैं। वदन्ति क्या कहते हैं? यज्ञात्वम अद्वयम। वो भगवान के बारे में कहते हैं कि भगवान का ज्ञान अद्वय है, अद्वय मतलब नॉट टू, दो नहीं है, एक है, यानी भगवान एक है लेकिन एक सुप्रीम पर्सनालिटी अपने आप को तीन स्वरूपों में व्यक्त करते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। तो भगवान के ये जो डिफरेंट फीचर्स हैं इसको हमको समझना चाहिए, और किस तरह से हैं ये फीचर्स हम इनको जानने की कोशिश करेंगे। ये है ब्रह्म ज्योति, इट लुक्स लाइक ए लाइट, नथिंग एल्स, है ना? इसका कोई आकार दिखता है आपको? नहीं। सो ये ब्रह्म ज्योति जो है इसी को ब्रह्म कहा जाता है। सो कहते हैं कि भगवान सर्वत्र हैं और सब कुछ हैं, तो भगवान अपने ब्रह्म ज्योति के रूप में इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विस्तारित हैं। ये ब्रह्म ज्योति जो है इसके बहुत सारे लक्षण हैं, इनको जानने की कोशिश करना चाहिए। सो सम इंफॉर्मेशन आई हैव ब्रॉट एंड यू कैन जस्ट सी दिस इंफॉर्मेशन। सो ब्रह्म का अर्थ होता है, एक डेफिनेशन होता है, ब्रह्म जो है शब्द, ब्रह्म शब्द का डेफिनेशन है बृहन्ति बृहन्यति च इति ब्रह्म, जो बड़ा है और बड़ा करता है वो ब्रह्म कहलाता है। ये ब्रह्म जो है ये अपने आप में विशाल है, इसका कोई व्यक्ति और छोर प्राप्त नहीं कर सकता। वेयर इट स्टार्ट्स एंड वेयर इट एंड्स नोबडी कैन टेल, जितना ही आप ढूंढते जाओ उसको वो उतना ही विशाल है, इतना ही विस्तृत है। जैसे आकाश जो है, आकाश को आप लोग कभी उसका एंड कहाँ पे है जान सकते हैं, एंड वेयर इट स्टार्टेड एनीबडी कैन अंडरस्टैंड. सो ये पूरा आकाश जो है इसमें पूर्ण संपूर्ण जगत में ब्रह्म ज्योति प्रसारित है, जो भगवान के शरीर से प्रकट होती है. इस ब्रह्म ज्योति को ये बहुत सारे लक्षण है. ये निर्विशेष स्वरूप है. निर्विशेष स्वरूप मतलब इसका कोई एक आकार नहीं है, ये निराकार है. इसको जिस रूप में चाहो उसी रूप में आपको प्रकाश के रूप में दिखाई देगा, प्रकाशमान है ये. और भगवान की आभा है और उन पर ही आश्रित है. भगवान भगवद्गीता में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं इस ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ. यानी प्रतिष्ठा होना मतलब आई एम द सोर्स. कृष्ण कहते हैं कि मैं इसका सोर्स हूँ और ये ब्रह्म ज्योति मुझसे प्रकट होती है. मतलब कहाँ से प्रकट होती है, भगवान के शरीर से वो ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है. तो भगवान के शरीर से जो आवरा प्रकट होता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं. आप जानते हैं आपके भी शरीर से आवरा प्रकट होता है, पर इट हैज़ लिमिटेशन. वॉट इज इट्स लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन है, एनीबडी कैन टेल मी? हमारे शरीर से जो आवरा निकलता है वो 3 फीट तक प्रकाशित होता है, नॉट मोर देन दैट. सो इफ यू डोंट वॉन्ट टू, किसी व्यक्ति को घसड़ना नहीं है तो उसे 3 फीट दूर खड़ा रहना चाहिए. अन्यथा आपको लगता है कि हमारा ग्रॉस बॉडी उसको टच नहीं करता है, पर हमारे शरीर से निकलने वाला ऑरा उसको टच करता है. एंड फिर उसका एक डिफरेंट फीलिंग आता है. जब दो व्यक्ति आपस में रगड़ते हैं तो कैसा फीलिंग आता है, उसी तरह से जब ऑरा भी रगड़ता है, यानी आपके बगल से कोई गुजर जाता है तो लगता है कि कुछ हो रहा है. But we are not able to see that aura because we have not given that proper vision. अगर हमारे पास में वो vision है तो हम अपने उस aura को देख सकते हैं. कभी कभी लोग देखते हैं ना, जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका में जब जाते थे लेक्चर देने के, तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रभुपाद हमको लगता है कि आपके शरीर से बड़ा तेज निकल रहा है, आपका चेहरा ग्लो कर रहा है, आपका शरीर जो है ग्लो कर रहा है. सो यू कैन सी विथ सम पर्सनैलिटीज दिस इज पॉसिबल, लेकिन उसको देखने के लिए एक विजन चाहिए. उसी तरह से भगवान के शरीर से जो आवरा निकलता है वो ब्रह्म ज्योति कहलाता है, और उसका कोई माप नहीं है कितना दूर तक वो विस्तारित है. उसका सोर्स तो भगवान है. ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मुझ पे आश्रित है भगवान कहते हैं. इसे ब्रह्म जो है इसका एक लक्षण बताते हैं कि ये मुक्त प्रग्रहा तत्व का वाचक है. मुक्त प्रग्रहा किसको कहते हैं, जैसे गाय होती है या बैल होता है, उसको आप गले में रस्सी बांधते हैं ना, तो उसको प्रग्रह कहते हैं. प्रकृष्ट रूपे न ग्रहण किया हुआ, विशेष रूप से बांधा गया उसको. पर अगर घोड़े को बांध के रखो और घोड़े को छोड़ दो तो फिर घोड़ा कितनी दूरी तक दौड़ सकता है, पक्षी को छोड़ दो पिंजरे से तो कितनी दूरी तक जा सकता है, अनलिमिटेड. उसी तरह से ब्रह्म जो है वो किसी के कब्जे में नहीं है, इट इज़ अनलिमिटेड. नोबडी कैन कॉम्प्रिहेंड दिस ब्रह्म. इसीलिए इसको कहते हैं ये मुक्त प्रग्रह शब्द का वाचक है. ये सच्चिदानंद स्वरूप है, स्वयं प्रकाशित है और ज्ञान स्वरूप है. मतलब ये सच्चिदानंद स्वरूप मतलब सत चित और आनंद, ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है. क्यों? क्योंकि भगवान का कॉन्स्टिट्यूएंट भी सच्चित आनंद है, और भगवान से जो साक्षात प्रकट होता है लिविंग एंटिटी आत्मा जिसको कहते हैं वो भी सच्चिदानंद है. क्यों? क्योंकि भगवान से जो भी कुछ कनेक्टेड है वो सच्चिदानंद है. तो उसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए वी हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट काइंड ऑफ नॉलेज. और वो नॉलेज को एक्चुअली व्यक्ति जो है शुद्धिकरण के द्वारा, अपने अस्तित्व के शुद्धिकरण से वो उसको विकसित कर सकता है. तो देयर इज अ प्रोसेस हाउ टू अंडरस्टैंड दैट नॉलेज. हम जिस चीज़ को सीखना चाहते वो सीख लेते हैं, है ना. उसी तरह से अगर हम ब्रह्म के तत्व को जानना चाहेंगे तो शास्त्रों के आधार पर हम ब्रह्म के तत्व को भी जान सकते हैं. सच्चिदानंद है, स्वयं प्रकाशित है, सेल्फ इफल्जेंट है. उसको प्रकाशित करने के लिए, जैसे यहाँ पे अगर ये लाइट का अरेंजमेंट ना हो तो अभी अंधेरा है, पर दैट इज सेल्फ इलेमिनेटिंग. क्यों? क्योंकि वो भगवान के शरीर से डायरेक्ट निकल रहा है. ज्ञान स्वरूप है, अनंत वैचित्र युक्त एवं विकारहीन है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है. और इट इज क्योंकि इसी ब्रह्म ज्योति के अंदर संपूर्ण सृष्टि जो है वो स्थापित है. जैसे यह आकाश है, इसी आकाश में सारे प्लैनेट हैं. आप आकाश में देखते कितने सारे तारे हैं इत्यादि, ये सब किसमें हैं? ये सब आकाश के अंदर हैं. एवरीथिंग इज अंडर दिस बैनर, आकाश के अंदर है. उसी तरह से सब कुछ ब्रह्म में ही प्रकाशित है. ब्रह्म से ही सब कुछ को प्रकाशित किया जाता है. ये सूर्य चंद्र इत्यादि जो रोशनी ड्राइव करते हैं वो ब्रह्म से ही प्रकाशित है. हम लोग फिफ्थ सेशन में डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत। और भगवान के सत स्वरूप का अनुभव कराता है। भगवान के तीन फीचर हैं, सत, चित और आनंद। तो केवल इस भगवान के सत मतलब इटर्निटी, ये कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान के इस इटर्नल स्वरूप का वाचक है, इसमें भगवान का वही स्वरूप केवल अनुभव किया जा सकता है। चित्त और आनंद, ये दो जो तत्व है इसका अनुभव इसमें नहीं होता है। दूसरा है, भगवान सर्वत्र हैं और परमात्मा के रूप में हैं। भगवान का एक प्रकाट्य है परमात्मा। मैंने कल आप लोग को बताया था महाविष्णु से किस तरह से परमात्मा निकलते हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में वो साक्षात विराजमान रहते, प्रत्येक कणकण में परमात्मा जो है वो विराजमान रहते हैं। तो ये परमात्मा के बारे में भगवद गीता में भी बहुत विस्तृत ज्ञान दिया गया है। 13वां अध्याय अगर भगवद गीता का पढ़ेंगे, 7वां अध्याय में भी परमात्मा के बारे में है, 13वें अध्याय में विस्तृत रूप से परमात्मा के बारे में भगवान बताते हैं। सो आज के स्कोप में हम लोग आपको इतना नहीं बता पाएंगे, बट फ्यूचर में वी कैन डिस्कस अबाउट दैट मोर एंड मोर। परमात्मा कहाँ रहते हैं? भगवान भगवद्गीता में स्वयं कहते हैं 18 चैप्टर में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं जैसे यंत्र के ऊपर कोई ऑपरेटर बैठा रहता है, उसी तरह से ये शरीर रूपी यंत्र पर मैं परमात्मा के रूप में बैठा हूँ और इस यंत्र को मैं संचालित करता हूँ। यानी भगवान और भगवान का एक जो अंश है पर आत्मा, ये दोनों ही इस हमारे ये शरीर जो है इसमें परमात्मा और आत्मा ये दो मुख्य व्यक्ति हैं। ऐसे अनंत आत्माएं इस शरीर में हैं। पर जैसे जैसे कहते हैं ना कि एक महाराष्ट्र है, इसका पॉपुलेशन कितना होगा, पर चीफ मिनिस्टर कितना है और गवर्नर कितने हैं, है ना? सो चीफ मिनिस्टर इज वन, गवर्नर इज वन, लाइक दैट परमात्मा इज गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर इज आत्मा। सो आत्मा को मोर प्रोमिनेंस दिया गया है, उसको ओन करने के लिए ये शरीर, ही कैन क्लेम दैट दिस इज माई बॉडी। पर इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको क्लेम नहीं कर सकते कि इट इज माई बॉडी। परमात्मा भी खुद के लिए क्लेम नहीं करते, परमात्मा कहते हैं ये आपकी बॉडी है। लेकिन परमात्मा जो है, जब तक आपको शक्ति ना दे, डायरेक्शन ना दे, तब तक जीव कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं है। इसीलिए परमात्मा प्रत्येक जीव के साथ में जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ वहाँ जाते हैं। श्वेता श्वेता उपनिषद में बताते हैं कि किस तरह से एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी जो है खट्टे मीठे फल खाने का प्रयास में लगा हुआ है, और जब कड़वे फल मिलता है उसको तो वो दुखी हो जाता है, जब मीठे फल मिलता है तो सुखी हो जाता है। उस तरह से आत्मा है इस जगत में, भौतिक जगत में, एक शरीर से दूसरे शरीर में ऐसे 84 लाख शरीरों में घूमता फिरता है। कहीं पे उसको अच्छे अनुभव होते हैं, कहीं पे उसको बुरे अनुभव होते हैं। और उसके साथ में दूसरा पक्षी है, उसको कहते हैं विटनेस बर्ड। वो खाली बार बार कहता है कि देखो तुम ये दुख भोग रहे हो, इसको सबको छोड़ो और मेरे साथ चलो, मैं तुमको एक शाश्वत जगह पे लेके जाता हूँ जहाँ पे तुमको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। पर आत्मा रूपी पक्षी परमात्मा की बात नहीं सुनता, इसलिए इस जगत में भटकता है। दिस डिटेल्स वी कैन डिस्कस समटाइम्स। सो परमात्मा प्रत्येक जीवी के शरीर में अंतर्निहित भगवत स्वरूप है, चतुर्भुज स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। शास्त्र में बताता है सशंख चक्रम सपीत वस्त्रम, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सकिरीट कुंडलम लंबा किरीट पहने हुए, किरीट यानी मुकुट पहने हुए हैं, शार्क शेप इयरिंग पहने हुए हैं। प्रत्येक जीव के जन्म जन्मांतर के साथी हैं। जीव जहाँ जहाँ भी जाता है उसके साथ साथ वो जाते हैं, उसको ही इज रियल जीवन साथी। सबके सुहृद हैं, हाँ, सबके सुहृद मित्र मतलब सबका अच्छा सोचने वाले, सबका भला चाहने वाले मित्र हैं वो भगवान। भगवान के सच्चित स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्मा में भगवान के दो फीचर्स का अनुभव होता है, सत और चित, फिर भी आनंद का अनुभव नहीं होता है। योगी लोग जो जाकर के तपस्या करते हैं वो भगवान के इस अंतर्निहित परमात्मा स्वरूप के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं योगा। योगा डज नॉट मीन एक्सरसाइजेस, दैट वी विल डिस्कस ऑन द लास्ट डे। परमात्मा और आत्मा में अंतर क्या है? आत्मा जो है वो जीव कहलाता है और परमात्मा जो है भगवान का एक स्वरूप है, एक अंश है। आत्मा जो है वो अणु है, वेरी माइन्यूट, और परमात्मा जो है वो विभु है, मतलब ही इज वेरी इनफाइनाइट, नो वन कैन अंडरस्टैंड हाउ इनफाइनाइट ही इज। ही केवल अपने शरीर के प्रति अभिज्ञ रहता है। आत्मा जिस शरीर में रहता है उसी शरीर को टिप टू टो सब कुछ जानता है, पर दूसरे के शरीर में कितना भी बगल में बैठा हुआ है उसके शरीर में क्या हो रहा है उसको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन भगवान जो प्रत्येक कण कण में है उनको सबके बारे में मालूम है, इसके शरीर में क्या हो रहा है, इसके शरीर में क्या हो रहा है, इसके शरीर में क्या हो रहा है। और परमात्मा के रूप में भगवान ये सारी जानकारी रखते हैं। आत्मा जो है स्वभाव से भगवान का सेवक है, और भगवान जो है परमात्मा के रूप में अनादिकाल से सेव्य हैं, यानी वो सेवा स्वीकार करते हैं। जीव भगवान के गुणों में एक जैसा है पर प्रमाण में भिन्न है। जैसे समुद्र का एक लोटा जल और पूरा इंटायर समुद्र, अगर उसके जल का अगर आप एनालिसिस करें तो जो समुद्र के जल में खनिज है वही उस समुद्र के एक लोटे जल में भी है ना। तो क्वालिटेटिवली वन, लेकिन क्वांटिटी समुद्र में क्वांटिटी कितना है जल की, अनलिमिटेड इनफाइनाइट। लेकिन लोटे में कितना क्वांटिटी है, लिमिटेड है। लोटा का जितना साइज है उतना ही पानी है उसके अंदर समुद्र का। लोटे का जो समुद्र का पानी है, यद्यपि समुद्र का पानी है लोटे में रखा हुआ है, उसमें आप बोट नहीं चला सकते है ना, उसमें देयर विल नॉट बी एनी फ्लोरा एंड फौना इन दैट। ऐसे समुद्र में जाकर के देखिए तो कितनी विविधता है। जितने प्राणी पृथ्वी पर यानी थल में नहीं रहते उससे कहीं 10 गुना ज्यादा प्राणी जो है वो जल में रहते हैं, एंड वेराइटी ऑफ प्राणीज रहते हैं उसमें, जल जीव। पृथ्वी पे आप इतनी विविधता नहीं देखेंगे जीवों की जितनी विविधता समुद्र के अंदर है। आई हैव दैट वीडियो ऑल्सो, लेकिन आपको दिखाने में समय जाएगा इसलिए नहीं दिखाऊंगा, कभी और देख सकते हैं हम लोग उसको। इतनी विविधता है जल के अंदर, फिर उसके अंदर खनिज है, तेल है, आपका जो मिनरल ऑयल आता है वो कहाँ से निकलते हैं, समुद्र से निकलते हैं है ना। मैक्सिमम चीज उसके अंदर पहाड़ हैं, उसके ऊपर बहुत सारे जेम्स हैं, ज्वेल्स हैं। समुद्र जो है इन सब चीज़ों का भंडार है, लेकिन पृथ्वी पर भी है पर इतना नहीं है जितना समुद्र के अंदर है। उसी तरह से एक लोटे जल में समुद्र के कुछ भी नहीं है। तो आत्मा जो है बहुत ही माइन्यूट है, वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है जो परमात्मा कर सकता है। लेकिन फिर भी आत्मा के बारे में कहा गया है कि इट इज डैजलिंग लाइक द थाउजेंड्स ऑफ सन। एक सन का कितना एफलजेंस होता है देखिए, वी आर नॉट एबल टू लुक एट द सन विथ आवर नेकेड आइज। अगर नून सन है तो आप अपनी आंख से देख सकते हैं उसको, उसकी चकाचौंध के सामने हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। तो आत्मा जो है यद्यपि वो एक कण है, आत्मा का साइज बताऊंगा मैं भी अगले प्रोपोर्शन में, 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। अगर आप अपने टिप ऑफ द हेयर को हाँ बाल की नोक को 10,000 हिस्से में कट करेंगे उसमें से एक हिस्सा जो है वो आत्मा का साइज है। कुछ लोगों ने बताया होगा कि आत्मा को कुछ जानता नहीं है, देखता नहीं है, लेकिन आत्मा के साइज को शास्त्रों में बताया गया कि आत्मा कितना छोटा है। इसके लिए आत्मा को अणु कहा गया है, और हमारे पास में ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है कि हम आत्मा को उतने टुकड़े में काट सकें। बाल को, अगर बाल की नोक को एकदम टिप ऑफ द हेयर अगर आपको कोई 10,000 टुकड़े विभाजित करने के लिए बोलेगा, यू हैव एनी इंस्ट्रूमेंट बाय विच यू कैन कट इट, नॉट पॉसिबल। इवन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लेके भी काटेंगे तो भी नहीं पॉसिबल है। लेजर हो चाहे कुछ भी हो, किसी से भी उसको कट किया नहीं जा सकता, इसीलिए इतना माइन्यूट है कि हम उसको देख नहीं सकते। लेकिन समुद्र की तरह से विशाल है परमात्मा। फिर आप कहेंगे कि उसको क्यों नहीं देख सकते हैं, उसको भी नहीं देख सकते क्योंकि उनको देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, चर्म चक्षु से हम उनको देख नहीं सकते हैं। और भगवान अगर कृपा करे किसी के ऊपर तो वो व्यक्ति उनको देख सकता है, साक्षात देख सकता है, पर भगवान कृपा क्यों करेंगे, हमारा और उनका क्या रिलेशन है ना, हमारा और उनका क्या रिलेशन है। माई पोजिशन इज टू सर्व हिम, एंड हम उनको सेवा नहीं करेंगे तो क्यों हमारे ऊपर कृपा करेंगे। इसीलिए भौतिक जगत की से मुक्ति की सच्चाई, जीव और परमात्मा के रिलेशन को समझना ही इस भौतिक जगत से मुक्त होना का तरीका है। भगवान एक व्यक्ति हैं, अब भगवान फीचर है, भगवान एक व्यक्ति हैं, और वो व्यक्ति कौन है। हम लोगों ने भगवान ये डेफिनेशन डिस्कस किया था, एक्चुअली सभी शास्त्रों में भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान किस तरह से एक व्यक्ति हैं। आपके कुरान में मानते हैं, बाइबल में मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, स्वरूप नहीं है, आपने सुना होगा है ना। बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में भगवान किसको कहते हैं बोलिए, एनीबडी नोस हु इज गॉड इन क्रिश्चियनिटी, What is the name of God in Christianity? Tell me. Jesus. No, he is son of God. God कौन है? Yes, Jehovah. Jehovah is God. तो Jehovah का कोई आप कहीं भी Christianity में कभी भी देखा है Jehovah का फोटो प्रकाशित किए? कहीं भी मंदिर देखा है? चर्च में उन लोगों का होगा फोटो भी या मूर्ति भी, तो किसका होता है? Jesus, who is son of God, and his mother Mary. ये दो ही होते हैं. There is no image of God. भगवान का विग्रह नहीं होता है. और इस्लाम में भी भगवान का विग्रह नहीं होता है कहीं. वो भगवान के स्वरूप को मानते नहीं हैं. बुद्धिज़्म में भगवान के स्वरूप को नहीं मानते. जैनिज़्म में भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं. जुडाइज़्म में भगवान के स्वरूप को नहीं मानते. बहुत सारे शास्त्रों में भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं. ओनली इन द सनातन धर्म के जो स्क्रिप्चर है उसमें बताया गया है. लेकिन अगर आप उनके भी शास्त्रों का ढंग से विश्लेषणात्मक अध्ययन करो तो यू विल फाइंड कि इवन देयर शास्त्र स्पीक्स अबाउट गॉड एज ए फॉर्म. नाउ यू कैन जस्ट सी हियर द आईज ऑफ द लॉर्ड. दिस इज मेंशनड इन जेनेसिस 38.7. जेनेसिस मीन्स बाइबल. बाइबल में बताया गया कि द आईज ऑफ द लॉर्ड. आईज ऑफ द लॉर्ड अगर हम रिफर कर रहे हैं तो भगवान का आँख है, तो मतलब उनका एक स्वरूप है. बिना स्वरूप के किसकी आँख हो सकती है? वी ऑल्सो रीड अंडर हिज फिट. दिस इज फ्रॉम अगेन बाइबल एक्सोडस 24.10. यू कैन गो एंड रिफर दिस. सो अंडर द फिट मीन्स भगवान के पैर के नीचे, तो पैर है उनका. बट दे डोंट डिस्क्राइब इट, दे डोंट एक्सप्लेन इट. उनके इसमें इन सब चीज़ों का पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं है. देन बाइबल एजिलिल इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि डिस्क्राइब गॉड एज हैविंग द सेम्बलेंस ऑफ ए ह्यूमन फॉर्म. मतलब भगवान का आकृति किसके जैसा है? मनुष्य के जैसा है. किसको रिफर कर रहे हैं वो लोग? हु दे रिफर टू? देन द ईयर्स ऑफ द लॉर्ड. भगवान के कान की भी चर्चा की गई है इसमें, उसका रेफरेंस है. द जेनेसिस चैप्टर 18:19 सेज गॉड अपीयर्ड बिफोर अब्राहम. हियर गॉड अपीयर्ड इन ह्यूमन लाइक फॉर्म, ऑल्दो द फॉर्म इज नॉट एलाबोरेटली डिस्क्राइब्ड. देन इन कुरान अल्लाह का मुख है बोलते हैं, फेस ऑफ अल्लाह. कुरान का भी रेफरेंस दिया हुआ है. देन अल्लाह आईज, उसका भी रेफरेंस दिया है. ऑल दिस इंफॉर्मेशन क्लियरली शोज दैट द सुप्रीम लॉर्ड इज ऑल्सो ए पर्सन. उनके भी शास्त्रों में है इसके बारे में, बट दे डोंट एक्चुअली डिस्क्राइब अबाउट द लॉर्ड. राइट? आपको सुनकर के हैरानी होगी. आई टेल यू टू रिफर ए बुक, द हिडन ट्रेजर ऑफ अल कुरान. आपको कभी भी पढ़ना चाहिए. क्या बोलते हैं उसको? इंटरफेथ डायलॉग. एंड देयर इज अ बुक कॉल्ड इस्लाम एंड वेदास. इस्लाम एंड वेदा, सनातन धर्म, उनका क्या सिमिलैरिटी है? तो उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं. इन दैट इन्फॉर्मेशन इट इज सेड दैट बिफोर आवर दिस, क्या नाम इनका, मोहम्मद पैगंबर, दे वेर वर्शिपिंग 300 डेमीगॉड्स. मुस्लिम्स दे वेर वर्शिपिंग 300 डेमीगॉड्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. ये पैगंबर, मोहम्मद पैगंबर, और ये सारा फॉर्म्स जो है दे हैव केप्ट इट इन मदीना. मक्का मदीना है ना, जहाँ पे वो लोग घूमने जाते हैं, हज करने जाते हैं. दे हैव केप्ट देयर. वहाँ पे एक स्फटिक शिला है जिसका शेप है ऐसे डायमंड शेप है, और इट्स ए ब्लैक स्टोन. दे से दैट इट हैज़ फॉलन फ्रॉम द हेवन, विच दे कंसिडर. उसको एक को छोड़ करके बाकी जो 350 अनेदर डेमीगॉड के जो फॉर्म्स थे उसको सबको उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया मोहम्मद पैगंबर ने. एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड दे टोल्ड दैट नो वन शुड वर्शिप ए इमेज. बट स्टिल अगर आप जाके रूट में देखेंगे जहाँ पे वो लोग हज करने जाते हैं, दे वर्शिप ए पर्सन, दे वर्शिप ए इमेज. एंड वॉट इज दैट इमेज? आपको सुन के हैरानी होगी कि हमारे भविष्य पुराण में बताया गया कि दैट इज द इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा, कालाग्नि रुद्र. देर आर 11 रुद्रास, वन ऑफ द रुद्रा इज लॉर्ड शिवा. दैट इज कालाग्नि रुद्रा. ये उनका फॉर्म है. और उनको लाने के लिए शास्त्र में बताया गया है कि हमारे देश के एक राजा थे शालिवाहन, ही हैज गॉन देयर टू ब्रिंग हिम बैक. But he told them, this time I will be worshipped only by the Malekshas, so I will not come with you, you go back to your place, and when time will come, I'll come back again. So, इस तरह से उनके इसमें भी भगवान का जो है एक विग्रह है, but they don't consider it. They don't explain it properly. और ये सारा इन्फॉर्मेशन आप उनके ही इससे ढूंढ करके निकाल सकते हैं. उनके कुरान से, उनके बाइबल से ही आप ये सारे इन्फॉर्मेशन ढूंढ करके निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड. तो हम लोग उनका कुरान बाइबल कहाँ पढ़ने जाएंगे? हम अपना ही शास्त्र ठीक से नहीं पढ़ते. अपने ही बारे में हमारे पास में ठीक से नॉलेज नहीं है. एंड वंस ए पर्सन अंडरस्टैंड्स ऑल दिस स्क्रिप्चर, उसके लिए धर्म में कोई भेद नहीं रह जाता है. फिर वो अपने आप को क्लासीफाई नहीं करता है कि मैं इस धर्म का हूँ, इस धर्म का हूँ. वो धर्म नहीं है, वो फेथ है. एंड फेथ कुड बी ब्लाइंड विदाउट एनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. सो इसीलिए भगवान के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है. अतः भगवान क्या है? वो साकार भी हैं और निराकार भी हैं, हमारे अनुभव में भी हैं और हमारे अनुभव से परे भी हैं. तो भगवान की तुलना निराकार और साकार में अनुभव देखते हम. ब्रह्म और भगवान में क्या डिफरेंस है? आई जस्ट नोटेड डाउन सम पॉइंट्स. ब्रह्म निर्गुण है. निर्गुण का मतलब होता है विदाउट एनी मटीरियल क्वालिटी, सत्व रज और तम. हाँ, तो ब्रह्म जो है सत्व रज और तम गुण से जो है प्रभावित नहीं होता, लेकिन आत्मा सत्व रज और तम गुण से प्रभावित होती है. और भगवान क्या है? भगवान सगुण है. सगुण मतलब ही हैज क्वालिटीज बट नॉट मटीरियल क्वालिटीज. सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं. भगवान के कौन से गुण है? भगवान के सच्चित आनंद, ये तीन गुण है. हम जो है रजोगुण से, तमोगुण से और सत्वगुण से बने हुए हैं, लेकिन भगवान जो है सत और चित्त और आनंद, ये तीन गुणों से भगवान का फीचर है. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ब्रह्म जो है अचिंत्य है और भगवान जो है अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं. अचिंत्य मीन्स इनकंसीवेबल. भगवान जो है, ब्रह्म को हम कंसीव कर पाना या अपने लिमिटेड सेंसेस से ब्रह्म को समझ पाना बड़ा कठिन है, इसीलिए उसको अचिंत्य कहा गया है. और भगवान जो है उन अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं, इसलिए भगवान को समझ पाना और भी कठिन है. लेकिन कोई व्यक्ति अगर भगवान ने जो तरीका बताया है उनको समझने का, उसके तरीके से जाने की प्रयास करेगा, ही विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, बिकॉज कृष्णा विल गिव हिज ब्लेसिंग्स टू दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड हिम. निराकार ज्योति के रूप में सर्वत्र व्याप्त है ब्रह्म, और परमात्मा के रूप में सर्वत्र भगवान व्याप्त है. ब्रह्म जो है अपरिवर्तनीय, स्थिर और अचल है, और सगुण भगवान जो है वो भी अपरिवर्तनीय, स्थिर और अचल है. क्रिया विहीनता के कारण ऐश्वर्य का अनुभव नहीं होता है. भगवान के जो ऐश्वर्य हैं, क्योंकि ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं होती है. वो जो ओम शांति रटते हैं ना, वो लोग कहाँ जाते हैं? दे आर आस्किंग फॉर पीस. तो ब्रह्म में अनंत शांति है, वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, नो एक्टिविटीज इन द ब्रह्म. लेकिन जहाँ भगवान है, षड ऐश्वर्य का संपूर्ण अनुभव होता है. हाँ, भगवान जहाँ पे, वहाँ पे षड ऐश्वर्य का संपूर्ण अनुभव होता है. अंत में परम सत्य का अनुभव होने का जोखिम रहता है. परम सत्य के अनुभव न होने का जोखिम रहता है. अगर कोई व्यक्ति केवल ब्रह्म फीचर तक ही जानता है, तो भगवान को जान पाएगा क्या? वो जीवन में कभी ये पॉसिबल नहीं है. और जब भगवान को नहीं जान पाएगा, तो उसके भगवत धाम में मुक्ति कभी नहीं हो सकती है. वो ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाएगा. और बहुत सारे लोग लिखते भी हैं ब्रह्मलीन, मतलब क्या हुआ? ब्रह्म में जाकर के लीन हो गए. लीन मतलब मर्ज हो गए. बट एक्चुअली दे आर नॉट मर्जिंग. जैसे आपको मैं बताऊं, एक ग्रीन कलर का पैरेट है, एक ग्रीन कलर के ट्री में जाकर के पत्ते में घुस जाता है, तो एक्सटर्नली दूर से देखने से लगता है कि वो उसमें मर्ज हो गया है, पर एक्चुअली मर्ज हो गए नहीं, मर्ज हुआ है ना. जब उसकी इच्छा होती है तो क्या होता है? वो उड़ के बाहर आ जाता है. उसी तरह से आत्मा जो ब्रह्म में कहता है कि मैं लीन हो जाता हूँ, वहां जाकर ओम शांति करता रहता है, लेकिन वो चूंकि आत्मा आनंदमय अभ्यासात है एंड इट्स एक्टिव, हमेशा क्रियाशील है, तो वहां पे एक जगह पे बैठ करके ओम शांति नहीं कर सकता है. पतंती अधो, फिर से वो वापस गिर जाता है. कहाँ आता है? फिर से इसी भौतिक जगत में वापस आ जाता है. क्यों भौतिक जगत में वापस आ जाता है? क्यों? क्योंकि उसको भगवान का अनुभव नहीं है, भगवान को नहीं जानता है, इसलिए ये खतरा है. सो ब्रह्म से आगे भगवान को जानना चाहिए. और यहाँ पे सफलता निश्चित है. कोई अगर व्यक्ति भगवान की शरण में गया है, तो ही विल 100% गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड. अधूरा अनुभव है, केवल सत और चित का ज्ञान संभव है और ये पूर्ण अनुभव है। सच्चित और आनंद ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों का अनुभूति कराता है। भगवत गीता में बताते हैं कि किस तरह से भगवान जो है एक व्यक्ति है और वही भगवान है। और भगवत गीता क्लियरली डिफाइन करती है, द मेनी पीपल आर देयर दे से दैट गॉड, प्रभुपाद को लोगों ने कहा कि प्रभुपाद अगर हम इसका नाम रखेंगे हमारे सोसाइटी का, जब रजिस्टर कर रहे थे कि गॉड कॉन्शियसनेस, गॉड इज़ ए वेक टर्म फॉर लॉर्ड। गॉड बोलने से क्या होता है उसको स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं आता है। अगर आप बोलो कि हमारे ऑफिस में मिस्टर चेयरमैन हैं, तो चेयरमैन कौन है भाई? चेयरमैन का कोई नाम गांव पता है कि नहीं है, है ना? बट यू से दैट दिस इज द पर्सन हु इज चेयरमैन, उनका नाम लो और कहो ये चेयरमैन है, ही स्टेज एट दिस प्लेस, हिज लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स आर लाइक दिस, ही राइड्स इन सच अ सच कार, ही डज दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, ही लुक्स शॉर्ट, ही इज लॉन्ग, ही इज फैट, ही इज, उसका कुछ तो एट्रीब्यूट बताते हैं ना, देन यू कम टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट पर्सन। सो गॉड इज ए वेग टर्म फॉर द लॉर्ड। लॉर्ड हैज हिज नेम, प्राइमरी नेम्स एंड सेकेंडरी नेम्स। सो प्राइमरी नेम क्या है? प्राइमरी नेम जो है वो भगवान के जो माता पिता उनको नाम देते हैं, कल मैंने बताया था आप लोगों को, नंदन नंदन, यशोदा नंदन, और कृष्ण, ये सब भगवान के प्राइमरी नाम है, राधा वल्लभ, हाँ श्याम सुंदर, ये भगवान के प्राइमरी नाम है। लेकिन भगवान के गुणों से भी उनके कुछ नाम है, जैसे अकारण वरुणागर, अकारण करुणा वरुणालय, कभी आपने सुना है भगवान का ये नाम? क्या मीनिंग है अकारण करुणा वरुणालय? गॉड इज कॉजलेसली मर्सीफुल, ही इज द ओशन ऑफ कॉजलेस मर्सी, अकारण करुणा वरुणालय, सिंपल है। हाँ, ओशन ऑफ कॉजलेस मर्सी। हाँ, इसके लिए भगवान को क्या बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं कि दयावान है, है ना, या और भी बहुत सारे नाम है भगवान के उनको गुणों को लेकर के, तो वो सेकेंडरी नाम कहलाते हैं। तो भगवान का ये प्राइमरी नाम है भगवान, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। तो अगर हम भगवान के बारे में जान गए तो भगवान समझ करके हम इस जगत में, विशेष करके भारत देश में अनेक देवी देवताओं की पूजा करते, तो फिर वो लोग कौन है? हमारे सबके घर में होंगे, है ना, रोज ऑफ डेमी गॉड्स, है कि नहीं? गणपति, शिवा, दुर्गा, दीज दीज दैट दैट, है ना, बहुत सारे चीज़ें हैं। इसके ऊपर हमारे एक सन्यासी थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने सूरत में एक अच्छा प्रवचन दिया था इसके ऊपर। ऐसे आप लोगों की तरह से बहुत सारे लोग बैठे थे और उनको सबको उठा उठा करके पूछा कि आप किसको मानते हो? ये साईं बाबा है, बोलिए। कितने लोग बोलते हैं ये भगवान है? तो कुछ लोग साईं बाबा को भगवान कहते हैं। क्यों भगवान है? इसके अंदर भगवान के कौन से गुण हैं? अगर भगवान को उनके गुणों से जानने की कोशिश करेंगे तो यू विल कम टू अंडरस्टैंड फाइनली देयर इज ओनली वन गॉड एंड दैट इज कृष्णा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। सो फिर बाकी ये डेमीगॉड्स कौन है, देवता कौन है, ये विषय आप जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस पे भ्रम रहता है। देवताओं को बहुत सारे लोग भगवान मानते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, तो जब वो सच्चाई जान भी जाते हैं फिर भी उनकी पूजा छोड़ने से वो हिचकिचाते हैं कि इनकी पूजा छोड़ दिया तो फिर हमारा क्या होगा, कहीं हमारा नुकसान तो नहीं करेंगे, है ना? अगर हम इनको भजन नहीं करेंगे, हमारा ग्राम देवता होते हैं, हमारा कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती है, है ना? इनका महाराष्ट्र लोग तो मैं जानता हूँ, वो हर साल ग्राम देवता की पूजा करने के लिए सब लोग गाँव में जाते हैं, एकत्र होते हैं, या कुल देवता या कुल देवी या गांव का देवता या गांव की देवी, उसका सब एकत्र होकर के पूजा करते हैं। तो क्या है ये सब चक्कर, इनके बारे में जानना आवश्यक है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिमिलर एनालॉजी, एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं। देवी देवताओं को भगवान के इस क्रिएशन में विभिन्न पदाधिकारी कहा जाता है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है तो इस सृष्टि को संचालित करने के लिए उन्होंने देवी देवताओं को एक ऑफिसर्स की तरह से नियुक्त कर रखा है, जो उस सृष्टि के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं। सो जैसे ऑफिस होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, सीईओ बोलते हैं, फिर सेल्स हेड होते हैं, फाइनेंस हेड होते हैं, मार्केटिंग हेड होते हैं, है ना, परचेस हेड होता है, कम्युनिटी हेड होता है, कंट्री हेड होता है, R&D का हेड होता है, सपोर्ट हेड होता है, अकाउंट्स हेड होता है, देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स लाइक दैट, दिस इज अ फ्यू टू मेक यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली भौतिक सृष्टि की सरकार में सीईओ कौन है? कृष्णा। कृष्ण जो है वो सुप्रीम मैनेजर है, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव है। और उनके इसमें जल संसाधन आपूर्ति मंत्री कौन है? देवराज इंद्र, ही इज द सप्लायर ऑफ वाटर। उसी तरह से ऊर्जा मंत्री कौन है? सूर्यदेव है। ऊर्जा राज्य मंत्री अग्निदेव है। जस्ट मैंने ऐसे नाम दिए जस्ट तो आपको समझ में आए, क्यों? क्योंकि ये लोग ये सारे डिपार्टमेंट संभालते हैं, जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, वरुण देव जो है वो जल विभाग के ऊर्जा मंत्री, क्या कहते हैं, राज्य मंत्री हैं। और वायु आपूर्ति मंत्री जो है वो कौन है? वायुदेव है। दीज आर द फोटोज ऑफ दिस डेमीगॉड्स। हाँ, दीज आर एक्चुअल फोटोज। दीज आर एक्चुअल फोटोज ऑफ द, ऐसा नहीं कि इसको जस्ट ऐसे कंटेम्पलेट कर दिया गया है। दीज आर द फोटोज विच आर अवेलेबल इन द स्क्रिप्चर्स, बेस्ड ऑन दैट देयर फोटोज इज मेड। दे लक्ष्मी जी हैं जो वो होम मिनिस्टर, क्या है वो, गृह मंत्री। लक्ष्मी जी फाइनेंस मिनिस्टर है। गृह मंत्री जो है वो दुर्गा देवी है, होम मिनिस्टर। कार्तिकेय रक्षा मंत्री। उसी तरह से शिक्षा मंत्री जो है वो सरस्वती है। मानव संसाधन और कानून मंत्री यमराज है। कुछ गड़बड़ करेंगे तो फिर यमराज उसकी सजा देंगे, है ना। और गृह निर्माण मंत्री जो है वो ब्रह्मा जी स्वयं है। उसी तरह से ये डेमी गॉड्स जो हैं भगवान के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं। एंड दे एक्चुअली अंडर द अथॉरिटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान के नियंत्रण में, भगवान के आदेश के अनुसार वो लोग क्या करते हैं, इस सृष्टि का संचालन करते हैं। जैसे भागवत में वर्णन आता है देवराज इंद्र जो जल आपूर्ति मंत्री हैं, है ना, तो उनकी पूजा करते थे ब्रज के लोग। आप लोगों ने स्टोरी सुना होगा, है ना, ब्रज के लोग उनकी पूजा करते थे। एक दिन छोटा कृष्णा कितने साल के थे, ऑलमोस्ट 6 or 7 years, 7 बरस के थे कृष्ण। और कृष्ण ने नंद बाबा को पूछा कि ये क्या तैयारियां चल रही है। नंद बाबा ने कहा कि बेटा हम लोग इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पूछा इंद्र की पूजा क्यों करना चाहते, इंद्र कौन है? इंद्र जो है वो जलपूर्ति का, बारिश का देवता है। अगर हम उसकी, हम लोग किसान हैं, हम खेती पर और पशुपालन पर निर्भर करते हैं। खेती के लिए और पशुपालन के लिए जल की आवश्यकता होती है, बारिश की आवश्यकता होती है, तो इंद्र हमको वो सप्लाई करते हैं। तो इसीलिए इन रिटर्न, हाँ, एज ए ग्रैटिट्यूड उनके प्रति हम क्या करते हैं, साल में एक बार उनकी पूजा करते हैं। तो कृष्ण ने उनको एक नास्तिकवाद का प्रचार किया, ये सिद्ध करने के लिए कि डेमी गॉड्स जो है दे आर नॉट द सप्लायर, सप्लायर इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। सो फिर उन्होंने कहा कि ये कैसे आपूर्ति करते हैं, ये तो बारिश जो है वो सूर्य गर्मी से पानी खींचता है और हवा उड़ करके जब पानी जाता है तो बादल जो है वो जाकर के पहाड़ों से टकराता है, उसके टकराने के बाद में फिर वो बारिश होती है। तो पहाड़ और बादल और पेड़ ये लोग मिलकर के बारिश करवाते हैं, आप इंद्र को क्यों दे रहे हो क्रेडिट, इंद्र इज नॉट क्रेडिट वर्थी फॉर दिस। तो इंद्र की पूजा मत करो, किसकी पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन की पूजा करो। सो गोवर्धन की पूजा हुआ तो इंद्र दुखी हो गया, और इंद्र ने क्या क्या नहीं किया, यू नो दैट स्टोरी। सो कहने का पॉइंट है कि भगवान ने इंद्र को वहाँ पे ये साबित कर दिया कि तुम कितना भी कुछ करना चाहोगे लेकिन व्हेन आई एम द कंट्रोलर यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इंद्र ने 7 रात 7 दिन भयानक वर्षा किया, ऐसे वर्षा किया जो इस प्लैनेट अर्थ को या इस ब्रह्मांड को विध्वंस करने के लिए जो बारिश की आवश्यकता होती है, ऐसे क्लाउड्स को भेजा, उनको संवर्तका क्लाउड्स कहते हैं, वो बादल आकर के बारिश किए। उसमें पानी की बूंदें, ऐसे छोटी छोटी बूंदें नहीं गिर रही थी, लग रहा था जैसे एक एक कॉलम गिर रहा है, हाथी के जैसे मोटा, एक एक बूंद पानी एक एक हाथी के जैसा आ रहा था। सो इट वॉज पोरिंग लाइक दैट। और कहते हैं कि 7 दिन के बाद में जब ब्रजवासी अपने घर पे आए तो उनके घर के सामने जो उन्होंने रंगोली बनाए थे उस रंगोली का एक ग्रेन भी बह करके कहीं नहीं गया था। हु इज द कंट्रोलर। यहाँ पे 6 साल पहले बॉम्बे में बारिश हुआ था, कुछ लोगों का पूरा फॉर्चून नष्ट हो गया, है ना। और वहाँ पे इतना बारिश किया, इतना भयानक बारिश किया और रंगोली तक बह करके नहीं गया, उनके घर की अन्य वस्तुओं का जाने का तो छोड़ दीजिए। सो हुज कंट्रोलर, Krishna is the supreme controller. Krishna can interfere into anybody's domain, but no one else can interfere into Krishna's activity, and no one else has the right to interfere into anybody else's activity, although they are all powerful people. So demigods are like that. So Devi Devata aur Bhagwan mein difference kya hai? Dekhiye, Bhagwan ek hai, Devi Devata anek hai. Bhagwan purn hai, Devi Devata Bhagwan ke ansh hai, jaise atma Bhagwan ka ansh hai. Bhagwan jo hai wo param pujya hai, aur Devi Devata sevak ki bhanti sadaiv Bhagwan ki paratpar seva karte hain. Bhagwan sarvotkrisht rachnakar hain, paratpar Bhagwan dwara nirmit hain ye log. और भौतिक अस्तित्व से परे हैं भगवान. भगवान भौतिक अस्तित्व में नहीं रहते, लेकिन देवी देवता जब तक भौतिक जगत है तभी तक है. भौतिक जगत का एक बार विनाश हो गया, महाविष्णु ने सांस अंदर ले लिया, देवी देवताओं का अस्तित्व नष्ट. और इनका एक टाइम पीरियड होता है, उसको एक मन्वंतर कहते हैं. एक मन्वंतर के बाद में सारे डेमीगॉड्स, सारे राजा महाराजा जितने भी हैं, सूर्य चंद्र इंद्र सब बदल जाते हैं. अभी जानते हैं आप इस समय सूर्य कौन है? विवस्वान है. इस समय इंद्र कौन है? एक पुरंदर नामक एक आत्मा है, वो इंद्र है. नेक्स्ट इंद्र इज वेटिंग, ऑलरेडी वेटिंग में है. इनका टाइम खत्म होने के बाद में ही विल बी टेकिंग चार्ज. और वो कौन है जानते हैं आप? हाँ, बलि महाराज. वामन और बलि का कथा सुना होगा ना, तो जो बलि महाराज हैं वो नेक्स्ट इंद्र बनने वाले हैं. नेक्स्ट ब्रह्मा कौन बनने वाले हैं? अभी का जो ब्रह्मा है इज अ डिफरेंट ब्रह्मा. नेक्स्ट ब्रह्मा, ब्रह्मा इज अ पोस्ट, तो नेक्स्ट ब्रह्मा हनुमान जी बनने वाले हैं. दीज आर ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन इन द शास्त्र. देर आर सप्तर्षि, सेवन ऋषिस हु आर ऑल्सो गाइडिंग दिस क्रिएशन. सो ये ऋषि भी चेंज हो जाएंगे, उनके पोस्ट में भी अलग अलग लोग आ जाएंगे. सो आप भी एक दिन ब्रह्मा बन सकते हैं, एक दिन इंद्र बन सकते हैं, सप्तर्षि बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, प्रोवाइडेड यू गेन दैट क्वालिफिकेशन. ऐसा नहीं है कि हम केवल तुच्छ आत्मा है तो इधर ही रहेंगे. हम भी पावरफुल. ब्रह्मा कौन बनता है? जो 100 लाइफ 100% अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं उसको, गृहस्थ जीवन की तरह से, जो सॉरी क्या कहते हैं उसको, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार परफेक्ट विदाउट एनी मिस्टेक किए 100 लाइफ्स अगर वो इसी तरह से जीता है तो ही बिकम्स नेक्स्ट ब्रह्मा. और जो शतक्रतु, शतक्रतु मतलब होता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो पूरा करेगा, ही कैन गेन द पावर टू बिकम इंद्रा. सूर्य बन सकता है कोई, चंद्र बन सकता है कोई, यमराज बन सकता है कोई. हम जो चाहें सब पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी गेन दैट क्वालिफिकेशन. और सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन क्या है? ये सारे डेमीगॉड जो है वो भगवान के भक्त हैं. भगवान कभी भी राक्षसों को पावर नहीं देते हैं. राक्षस के रूप में बलि महाराज ने इंद्र को अटैक किया, भगवान ने उनसे वापस राज्य वामन के रूप में लेके फिर से इंद्र को दे दिया और कहा कि अगर आपको इंद्र बनना है तो वेट करो, आपको नेक्स्ट मिलेनियम में बनाया जाएगा इंद्र, बट आप अपनी इच्छा से खींच करके नहीं ले सकते. यू हैव टू बिकम माई डिवोटी. और इंद्र बलि महाराज जो है यद्यपि राक्षस कुल में पैदा हुए हैं लेकिन भगवान के परम भक्त हैं. कैसे सिद्ध होता है? ऐसे सिद्ध होता है कि बलि महाराज से जब भगवान ने 3 पग जमीन मांगा, 2 पग जमीन में उन्होंने पूरा सब कुछ ले लिया, और 3रा पग रखने के लिए जमीन मांगा तो उन्होंने भगवान को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया. आई एम नाउ योर्स, आप जो चाहिए आप मेरे सिर पर रख दो, मैं आपको समर्पित हूँ, तो मेरा जो कुछ है वो आपका है, मेरा अपना कुछ नहीं है. जब व्यक्ति इस तरह से भाव लेकर के भगवान को समर्पित हो जाएगा तब भगवान जो है उसको अपनी इच्छा से या उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए जो चाहेगा उसको दे सकते हैं. ध्रुव महाराज छोटा बच्चा था 5 वर्ष का, और अपने पिता के और अपनी सौतेली माता के व्यवहार से क्रुद्ध होकर के वो जंगल में जाकर के तपस्या करता है. नारद ऋषि कहते हैं कि मत जाओ, अभी तुम छोटे हो, तपस्या की उम्र नहीं है तुम्हारी. फिर भी जाकर के तपस्या करता है, कहता है कि मुझे मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर यानी ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए. भगवान उसकी वो राज्य की अभिलाषा पूर्ति करते हैं और उसको भगवत धाम का भी टिकट दे देते हैं. उसके लिए भगवान पर्सनली एक ध्रुव लोक बना करके देते हैं. आप देखते होंगे ध्रुव तारा है ना, वो ध्रुव लोक कहलाता है. सो हम भगवान को अगर प्रसन्न कर सकते हैं तो हम भगवान से जो चाहें हमारी, इसलिए कहते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीब्रेन भक्ति योगे न यजत पुरुष परम। हमको इस जगत में कुछ चाहिए नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो, हर परिस्थिति में केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो आपकी जो भी इच्छा अभिलाषा है वो भगवान की कृपा से पूरी होगी। पर कभी कभी भगवान कोई इच्छा अभिलाषा पूरी करने से पहले उस व्यक्ति को प्योरीफाई करते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। देवी देवता ब्रह्मांडी क्रियाकलापों को संचालित करने के विभिन्न स्तर पर शक्तियों का आवंटन है, और भगवान जो है परमेश्वर और स्वयं नियंता हैं, परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं ये देवी देवता। भगवान स्वराट है और भौतिक देहधारी है, इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि से त्रस्त हैं देवी देवता भी, लेकिन भगवान जो है वो पूर्ण है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे हैं। विभिन्न स्तरों पर प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होते हैं देवी देवता, और भगवान जो है प्रकृति के तीन गुणों को कंट्रोल करते हैं। भगवान कहते हैं दैवी ही ऐशा गुणमयी, ये जो माया है ये मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान कहते हैं अस्थाई ओहदा है, इट्स अ टेम्परेरी पोजिशन, लेकिन भगवान का पोजिशन कभी कोई कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है। नोबडी कैन बिकम गॉड। भगवान जब अपने माता देवकी के गर्भ में है तभी भी भगवान है, गर्भ से बाहर आए अभी दो दिन के बच्चे हैं तभी भी भगवान है, और भगवान जो है महाभारत का युद्ध कर रहे हैं तभी भी भगवान है। हर परिस्थिति में भगवान भगवान है। भगवान को भगवान बनने के लिए कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ती है, दिस वन मस्ट रियलाइज। बाकी हम लोग बोलते हैं ये भगवान आ गए, खड़े बाबा, दिस बाबा, दैट बाबा, इन्होंने हिमालय में इतने साल तक तपस्या किया है। कोई तपस्या करने से भगवान नहीं बनता है। देवी देवताओं की पूजा और भगवान की आराधना में क्या डिफरेंस है ये जानिए। देवी देवताओं की पूजा जो है इच्छा पूर्ति के लिए होती है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। कामस्तस्त हृतज ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम अस्थाय प्रकृत नियत स्वय। भगवद्गीता के सातवें अध्याय में कहते हैं कि जिन लोगों की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अभिलाषा होती है वो लोग क्या करते हैं, डेमीगॉड्स के पास जाते हैं। और ये डेमीगॉड्स किस प्रकार की इच्छा पूरी करते हैं, किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो सूर्य की पूजा करता है, किसी को बाहुबल चाहिए तो इंद्र की पूजा करता है, किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो देवी की पूजा करता है यानी दुर्गा देवी की पूजा करता है, किसी को सुंदर पति चाहिए तो लॉर्ड शिवा की वर्शिप करता है। इस तरह से अनेक प्रकार के देवी देवता, अनेक प्रकार के, आज ही एक जन मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहा था, उसको किसी ने ईमेल में एक क्वेश्चन पूछा भेज करके कि देवी देवता जो है अगर किसी दूसरे का वर्शिप कर रहे हैं और वो कुछ और चीज़ें चाहते हैं तो क्या वो दूसरा देवी गॉड जिस दूसरे किसी के अंडर में है उसको सप्लाई कर सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर एक म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस है तो कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग कार्य करता है। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने बिजली का कार्य कराना है और वो एप्लीकेशन जो है पानी के डिपार्टमेंट में देके आ गया तो वो लोग कर देंगे इसका बिजली का कार्य? एट मैक्स क्या करेंगे, उसका हेल्प करेंगे कि उसने गलती से पानी डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दे दिया तो उसको बिजली डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे और उनको बोलेंगे कि तुम जा करके इसके ऊपर एक्शन ले लो। पर कैन पानी का डिपार्टमेंट बिजली का कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसी तरह से कोई भी डेमीगॉड जो है अगर कोई व्यक्ति अज्ञान के कारण किसी और डेमीगॉड का वर्शिप कर रहा है और कहता है कि ये मेरी इच्छा पूरी कर दे तो वो नहीं कर सकता है। पर भगवान सबकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। भगवान ने अगर एक फ़ोन घुमा दिया, हाँ अब डिपेंड करता है कि भगवान किसी के यहाँ पर्सनल जाकर के क्यों इसकी इच्छा पूरी करेंगे, और भगवान जो है किसी को अगर उसकी इच्छा पूरी करनी है तो किसी डिपार्टमेंट हेड को भेज देंगे, जाओ इसकी इच्छा पूरी कर दो, है ना? तो व्यक्ति चाहता क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक स्टोरी बताता हूँ आपको। एक बार अकबर और बीरबल आपस में एक क्वेश्चन हुआ और अकबर ने बीरबल से कहा कि मैंने सुना है आपके भगवान बार बार अवतार लेते हैं, तो आपके भगवान यहाँ इस जगत में बार बार अवतार क्यों लेते हैं? तो बीरबल ने कहा, मतलब उसने कहा कि अवतार क्यों लेते हैं, क्या वो एक जगह पर बैठे अपना काम पूरा नहीं करवा सकते हैं क्या? उनको अवतार लेने की क्या ज़रूरत पड़ती है? अपने गाँव में बैठे रहते अपने घर पर अपने लोक में और वहाँ से अपनी इच्छा मात्र से वो सब कुछ करवा सकते हैं। तो बीरबल ने कहा कि समय आने पर मैं इसका उत्तर दूंगा। तो एक बार वो लोग नौका विहार के लिए गए थे, अकबर बीरबल बैठे थे, बहुत सारे बोट्स थे, उसमें अकबर का छोटा बेटा भी बैठा हुआ था। अचानक बीरबल ने वो छोटे बच्चे को उठा के पानी में फेंक दिया। जैसे ही पानी में फेंक दिया तो अकबर जो है कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ड्रेस पहने ही सीधा पानी में कूद गया यमुना के। और somehow other तैर तैर करके अपने बच्चे को पकड़ करके लेके आया, और पकड़ के जब उसको बोट में खींच के लाया तो कहा कि बीरबल को अरेस्ट कर लो। बीरबल ने मेरे बेटे को मारने का प्रयास क्यों किया? तो अकबर ने, बीरबल ने कहा कि महाराज, मैं आपके बेटे को मारने का प्रयास नहीं किया, मैं तो केवल आपको एक, आपने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर देना चाहता था। आपके बेटे को बचाने के लिए यहाँ बहुत सारे आपके सैनिक थे, तैराक थे, सब लोग, आपको, आप उनको आदेश दे सकते थे कि जाओ मेरे बेटे को, बीरबल ने पानी में फेंक दिया, उसको निकाल के लाओ, है ना। लेकिन मैं, आप क्यों खुद जंप कर गए? आपके आदेश को मानने वाले तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप मेरे को आदेश दे सकते थे, मैं आपका मंत्री हूँ, बाकी आपके सिक्योरिटी यहाँ पर है, इतनी सारी सेना है, राज प्रजा है और आपकी, आपको उनको आदेश दे सकते थे, पर चूंकि आप उनसे प्रेम करते हैं इसीलिए आपने कुछ नहीं देखा, अपना सैनिक नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, आपने पर्सनली जंप कर लिया। उसी तरह से भगवान भी जो है, जितने भी जीव हैं भगवान के कौन है? संतान है। और उनको इस जगत में भटकता हुआ देख करके भगवान को बड़ा दुख होता है, जानते हैं आप? भगवान कहते हैं मम वामसो जीव लोके जीव भूत सनातन, सनातन काल से ये जीव मेरा अंश है, लेकिन इस भौतिक जगत में आकर के मना सष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, मन और इंद्रियों के चक्कर में पड़ करके यहाँ आकर के कष्ट भोग रहा है। तो भगवान उसको बचाने के लिए पर्सनली अवतार लेकर के आते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। उसी तरह से भगवान की पूजा जो है, ये देवी देवताओं की जो पूजा है वो केवल अपनी भौतिक इच्छा की से होती है, लेकिन भगवान की पूजा जो है वो भौतिक इच्छा से नहीं होती है, भौतिक इच्छा से नहीं होती है। प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान को नहीं बुलाया, अपने पिता को मारने के लिए बुलाया क्या उन्होंने? इनफैक्ट भगवान ने जब उसको मार दिया, भगवान जब बहुत प्रसन्न होकर के उनसे पूछने लगे कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ प्रहलाद, पूछो तुम क्या चाहते हो, कोई भी वरदान मैं देने के लिए तुमको तत्पर हूँ। प्रहलाद ने कहा कि मैं आपका बिजनेसमैन नहीं हूँ, कोई कि कोई मेरे को पैसा देगा तो फिर मैं उसको सामान दूंगा, या मैं आपको पैसा दूँ और आप मेरे को सामान दो, आपकी पूजा मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि आपसे कुछ मुझे भौतिक लाभ चाहिए। भगवान ने जब बहुत प्रेशर किया तो उसने कहा कि मेरा पिता जो है वो आपका भक्त नहीं था, जीवन भर राक्षस वृत्ति का था, भौतिक जगत में भोग करना चाहता था, और अपने कर्म के कारण वो निश्चित रूप से नरक में जाएगा, तो मेरी इच्छा है कि आप उसको मुक्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा कि प्रहलाद, तुम मेरी भक्ति करने से तुम्हारा पिता ही नहीं, तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर गई, तुम्हारी 21 पीढ़ियों को मैंने बिना तुमसे पूछे मुक्त कर दिया, अब मांगो क्या मांगते हो। फिर भी प्रहलाद ने कुछ मांगा नहीं। तो देखो, प्रहलाद के अंदर अपने पिता के प्रति दुश्मनी थी कि नरसिंह देव को प्रकट करने के लिए बोला कि आ जाओ और इसको मार डालो, हाँ। प्रहलाद ने कोई प्रतिकार नहीं किया, जबकि उसके पिता ने प्रहलाद को मार डालने का पूरा प्रयास किया। सो भगवान की भक्ति जो है वो किसी चीज की प्राप्ति के लिए नहीं होती है, अहेतु की अप्रतिहता। भगवान की भक्ति बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अभिलाषा के करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि प्रेम के कारण। मैंने कल बताया था, कुछ लोग डर के मारे भगवान का भक्ति करते हैं, जैसे कौन लोग डर के मारे भगवान की भक्ति करते हैं? नहीं, मोस्टली जो है ना, ये क्या कहते हैं, मुसलमान इस्लाम के लोग जो है, दे फियर गॉड, इसलिए वो क्या बोलते हैं, अल्लाह अकबर, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए वो भगवान से कहते हैं कि प्लीज़ सेव अस, हमारी रक्षा करो, हाँ। और भोग की इच्छा से भगवान की भक्ति कौन लोग करते हैं? क्रिश्चियनिटी फेथ के, इसलिए जब मंदिर में जाते तो क्या मांगते हैं? यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिश्चियन कौन है, ब्रांडेड नहीं है कोई, जिसके मन में ऐसी भावना है वो है, चाहे वो कोई भी कौम में है वो। क्रिश्चियनिटी मेंटालिटी के लोग क्या करते हैं? ओ गॉड प्लीज़ गिव अस आवर डेली ब्रेड, भगवान के सामने जाके घुटने टेक करके हाथ फैलाते और क्या कहते, हमको खाने के लिए दो, हमारी रक्षा करो। और कुछ लोग ड्यूटी समझ करके भगवान की भक्ति करते हैं कि भगवान ने मेरे को जन्म दिया है, भगवान मेरे को इतना सब कुछ दे रहे हैं, जैसे सरकार पानी दे रही है, बिजली दे रही है, तो मैं भी टैक्स दूंगा उस भाव से। लेकिन कुछ लोग जो है प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिणष्टु माम अदर्शनाम अर्महताम करोतु वा यदा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। कहते हैं हे प्रभो, आप चाहो तो मुझे प्रेम से आलिंगन करो, अपने गले लगाओ, या आप चाहो तो आपके लात की ठोकर मार करके मेरा हृदय तोड़ दो और मुझे दूर फेंक दो, उसके बावजूद भी केवल मैं आपकी ही भक्ति करूँगा, आप ही मेरे स्वामी हो, इस जगत में दूसरा और मेरा कोई स्वामी नहीं है। तुकाराम महाराज कहते हैं ना, तुटो है मस्तक फुटो है शरीर, नामाचा गजर सोडू नये, अंतवंत देहाचा झाला जरी अंत तरी कीर्तन रंग सोडू नये। मरने को तैयार है लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। तो ये प्रेम से है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए कुछ भी कष्ट सहने के लिए तैयार रहते हैं। तो जब व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, नहीं तो जो भगवान से कुछ मांगता है वो बोलता है भगवान ने ये नहीं दिया तो एक ऐसा भगवान, दैट इज नॉट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। भगवान का ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। भगवान की भक्ति करना जो है वो क्षणिक होता है। जैसे ये मधुमक्खी देखिए, एक फोटो दिया है मधुमक्खी का, ये लोग इतना सब कुछ जमा करते हैं और उसके बाद में उनका हनी कौन लेके जाता है? या तो आदमी चुरा लेता है, नहीं तो भालू चुरा लेता है। सो दे डू सो मच थिंग, पर कितना देर के लिए रुका पाते हैं उसको? हाँ, इसमें कहा गया है अंतवंत फलम तेषां तद बहुत अल्प मेधशाम देवान देव यो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। अंतवंत फल, देवताओं की फल जो कामना करते हैं, जैसे कोई गया हे भगवान मेरे को पास कर दो, गणपति को जाके बोलता है फर्स्ट ईयर में कि मेरे को पास कर दो, तो फर्स्ट ईयर में गणपति ने मान लो उसको पास करवा दिया तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर से जाना पड़ता है नेक्स्ट ईयर फिर से जाना पड़ता है गणपति मुझे पास करवा देना। हाँ, या कुछ और चाहिए तो फिर से बार बार गणपति के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उसका फल जो है एक बार बैटरी चार्ज किया तो दो घंटे के बाद नष्ट। लेकिन भगवान की जो भक्ति करता है वो नष्ट नहीं होता है। ना यह विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। मैंने कल बताया था आप लोग को, इसके बाद कल या परसों बताया था कि भगवान की भक्ति में किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं है। आपने जितना किया ये जन्म जन्मांतर तक उतना क्रेडिट में रहेगा, आप चाहे कितना भी विड्रॉ करो नष्ट भी नहीं होगा। और उल्टा क्या होगा, भगवान आपके हर परिस्थिति में मदद भी करेंगे। हाँ, सबसे बड़ा डर क्या होता है जानते हैं? महतो भयात, सबसे बड़ा डर क्या है? मनुष्य योनि प्राप्त किया है फिर से निम्न योनि में चला जाना। अभी मनुष्य योनि प्राप्त किए हैं, पराठे खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं गरम गरम। हाँ, अगर फिर से पतित होकर के कुत्ता या सुअर बन गए तो क्या खाना पड़ेगा? हाँ, ओबियसली। तो इट्स अ पतन, ये जो पतन है निम्न योनि में जाना, आप जानते हैं प्रभुपाद जी लिखते हैं इन दिस मटीरियल वर्ल्ड इकोनॉमिक नेसेसिटी ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज इज फुलफिल्ड बट एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग ऑल अदर नेसेसिटी ऑफ ऑल अदर लिविंग बींग्स आर फुलफिल्ड इन अ वेरी नेस्टिक वे। कीड़े क्या खाते हैं बताइए? सड़ा हुआ गला हुआ मांस खाते हैं। कोई ढोर मर गया, कोई कुत्ता मर गया, उसके मांस को खा करके जिंदा रहते हैं। चिड़िया सब क्या खाते हैं? कीड़े मकोड़े खाते हैं, है ना? और भी बहुत सारे प्राणी हैं, क्या खाते हैं वो लोग? देखिए कौवा क्या खाता है, कभी कभी देखो आदमी जो है वो थूक देता है तो कौवा आकर के उसको खाना शुरू करता है। अगर हम देखते हैं उसको कितना गंदा लगता है, पर हम अगर कौवा बन जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है, अगर हम अपना कर्म सही नहीं करेंगे तो बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। हम कुत्ता बन गए, बकरी बन गए, भेड़ बन गए तो क्या होगा? हमारी नेसेसिटी फुलफिल होगी, लेकिन फिर हमको गरम हलवा गरम चपाती नहीं मिलने वाला है। क्या मिलेगा? जो बाकी अन्य पशु पक्षी रिजेक्ट करते हैं उनको खा करके जीना पड़ेगा। जस्ट गिव अ थिंकिंग थॉट, इस विषय के ऊपर थोड़ा विचार करो कि हम अगर अपना जीवन आज नहीं सुधारेंगे तो हमारे लिए कौन सा रास्ता वेट कर रहा है, वेयर वी आर गोइंग। हम इस शरीर में रहेंगे कितने साल रहेंगे? बी केयरफुल, बी अलर्ट, सावधान हो जाओ, और सावधान होकर के अपने जीवन को संभालने की कोशिश करो, क्योंकि हम इस जीवन में किसी और के लिए कुछ करने का प्रयास करेंगे और उसके लिए अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो दैट पर्सन विल नॉट कम टू सेव अस एट द एंड ऑफ लाइफ। हमारा कर्म जो है वो हमको बचाएगा। इसीलिए स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, अपने असली धर्म को पहचानो और वो धर्म वो कर्म करो, उसको करने के लिए किसी भी प्रकार से चूकना नहीं चाहिए। देवी देवताओं की आराधना जो है केवल आराध्य के प्रति विश्वास होता है। अगर गणपति हमारी इच्छा पूरी कर रहा है तो बाकी दूसरों को हम रिजेक्ट कर देते हैं, उनके प्रति हमारा कोई आसक्ति नहीं रहता, कोई प्रेम नहीं रहता है। लेकिन भगवान की जो भक्ति करता है वो यहाँ तक कि मच्छर तक से वो द्वेष नहीं करता, मच्छर तक को नहीं मारता, कीड़े मकोड़ों को भी कष्ट नहीं देता है। लेकिन जो डेमीगॉड की वर्शिप करने वाला है, यहाँ देखो बिरार में एक जीवदानी देवी का मंदिर है, मैं जब कृष्ण भावना में नहीं आया था तो एक बार वहाँ गया था, जा करके देख करके वापस कभी नहीं गया जीवन में। वहाँ जा करके देखा, क्या देखते हैं कि लोग कुछ मन्नतें मानते हैं, मेरा बेटा पास हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और वहाँ पे ले जा करके बकरा को नहीं तो मुर्गी को काट काट करके फेंकते हैं। तो उसके प्रति तो उनके मन में दया है, डेमीगॉड के प्रति उनकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, लेकिन बाकी जीवों के प्रति क्या है उनके मन में। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाता है वो जानता है कि प्रत्येक प्राणी भगवान का अंश है, चाहे वो किसी भी शरीर में क्यों नहीं है, वो केवल अपना कर्म भोग रहा है, तो हम उसके शरीर को मारते नहीं हैं, उस पर दया करते हैं, यहाँ तक कि उसकी भी उन्नति हो सके उसके लिए भी प्रयास करते हैं, उसको भी हम लोग प्रसाद खिलाते हैं, है ना। हमारे गुरु महाराज एक बार उडुपी में गए थे कुछ मेडिकल पर्पज से, वहाँ पे उन्होंने देखा था कि एक बार एक कुत्ते का बच्चा जो है एक सड़क के अंदर बहुत सारा खड्डा खोद रहा था छोटा सा, और खड्डा खोद के उसी में सो गया। एक आदमी गाड़ी चला करके आया, उसके ऊपर से उसको चला करके चला गया, वो कह 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 करके बेचारा मर रहा था। महाराज जब वापस आ रहे थे तो उनको उन्होंने देखा, एक आदमी जो है उसी कुत्ते के बच्चे के ऊपर से गाड़ी चला करके चला गया, और एक साधु जब आया तो उसको देखा तो उसको बहुत कष्ट हुआ, वो सोचा कि ये जीव भले ही कुत्ते के शरीर में है मर रहा है, पर उसके बगल में बैठ करके उसकी उन्नति के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगे कि इसके कान में हरे कृष्ण महामंत्र का ध्वनि जाएगा तो इसका उद्धार होगा। हाँ, तो हम लोग क्या बकरा काटते हैं, मुर्गी काटते हैं तो वहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं? हम चाहते हैं कि इसका उद्धार हो, हम तो किस भाव से जाते हैं, लार टपकता रहता है, कब इसको काटूं, कब फ्राई करूं और कब खा जाऊं। हाँ, तो ये दया का भावना नहीं आता है। सो जो डेमीगॉड वर्शिपर्स होते हैं उनके अंदर ये बुराई होती है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसके अंदर ये बुराइयाँ नहीं होती हैं। भगवान के जैसे डेमीगॉड वर्शिप करना पत्तों को पानी पिलाने के जैसा है। ये प्यन्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धान्विता ते भी मामे व कौनते यजंते अविधि पूर्वकम। भगवान कहते हैं कि अगर किसी पेड़ को, हर पौधे को, पत्ते को, फल को, फूल को, जड़ को, सबको पानी पिलाना है तो कहाँ पानी डालते हैं? हाँ, जड़ में। और अगर आपके शरीर में जितने भी अंग हैं सबको रिष्ट पुष्ट करना है तो भोजन कहाँ खिलाते हैं? कहाँ खिलाते हैं? नाक को ठूसते हैं, कान में ठूसते हैं। अगर ठूसेंगे तो क्या होगा? वो रिष्ट पुष्ट भी है तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। कान में अगर हम अन्न ठूसना शुरू करें तो क्या होगा बताइए आप? या नाक में ठूसना शुरू कर दे तो क्या होगा, है ना। जितने भी हमारे होल्स है बॉडी में, अगर उसमें से अदर देन मुख हम अगर अन्न को पेट में ना डाल करके किसी अन्य होल में डालेंगे तो क्या होगा बताइए आप? जस्ट थिंक ऑफ दिस। उसी तरह से हमको सोचना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करना छोड़ करके बाकी डेमीगॉड्स की भक्ति कर रहे हैं अज्ञान के कारण, तो एक्चुअली हम अपना नुकसान ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो जो है वो पिता के समान है, हमसे कोई गलती भी हो गई तो पिता की तरह से थप्पड़ नहीं मारेंगे हम, हमारा नुकसान नहीं करेंगे, हमको मार नहीं देंगे। लेकिन डेमीगॉड्स में किसी के प्रति अगर थोड़ा सा गलती हो गई तो वो डेमीगॉड क्या कर सकता है? आपका अहित करेगा। जैसे इंद्र, उसकी पूजा नहीं किया ब्रजवासियों ने तो इंद्र ने क्या किया? इतने भयानक बारिश करवाया और न केवल वो ब्रजवासियों को मार डालने का प्रयास किया बल्कि उनके गोधन को, उनके अन्न धन को, उनके खेत को, उनके गांव को, घर को, सब चीज को डुबा करके नष्ट करने की कोशिश किया, है ना। सब चीज को डुबा करके नष्ट करने, क्या गलती हुई थी? एक बच्चे की बात सुनकर के उन्होंने उसकी पूजा न करके एक पहाड़ की पूजा कर दी थी। कोई गलत किया था उन्होंने? अगर कृष्ण की बात मान करके कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने एक पहाड़ की पूजा कर ही दी तो इंद्र को इतना कुपित होने की क्या आवश्यकता थी? पर इंद्र फिर भी कुपित हो गया था। ये डेमीगॉड्स का प्रॉब्लम है, पर भगवान का ये प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा भगवान का नाम जपोगे, जैसे एक वराह पुराण में आता है कथन, उसमें एक यवन जो है वो लघु संघ इसके लिए दीर्घ शंका करने के लिए गया था। दीर्घ शंका जानते हैं आप, लैटरिन उसको दीर्घ शंका बोलते हैं, वन नंबर के लिए जो जाते हैं उसको लघु शंका बोलते हैं। तो दीर्घ शंका करने के लिए गया था तो वो बैठा है जहाँ पे वो विष्ठा तो त्याग दिया, लेकिन फिर भी उसको अभी स्टमक ठीक से खाली नहीं हुआ है, तो और देर तक बैठा है। एक सुअर, वाइल्ड बोर, वो देख रहा था उसको, उसको खाने की इच्छा थी पर देख रहा है कि ये उठ नहीं रहा है, तो उसका जो धैर्य का बांध है वो टूट गया, और वो गुस्से में आकर के इसको ढकेलने के लिए आया, तो उसके तो नाक पे टस्क होता है, और वो टस्क में उसको पकड़ करके और उसको ढकेलते हुए एक पेड़ में जा करके दे मारा। जैसे उसके पेट में वो टस्क घुस गया तो वो मरने लगा, एंड बिकॉज ही वॉज अ यवन, वो उसको कर्स करने लगा, उसको शाप देने लगा, हराम हराम हराम। लेकिन जैसे हराम हराम कहा, वो चतुर्भुज विष्णु स्वरूप पकड़ करके और भगवत धाम वापस चला गया। तो भगवान ने उसको किस रूप में लिया? उसको कर्ज के रूप में नहीं लिया, हे राम, इस रूप में लिया भगवान ने उसको, और उसका क्या कर दिया? लाभ कर दिया। अजामिल का स्टोरी यही टेस्टिमनी है। अजामिल अपने बेटे को बुला रहा था जिसका नाम उसने नारायण रखा था, जब यमदूत उसको लेने के लिए आए थे, नारायण अपने पुत्र को बुला रहा था, 4-5 बरस का बेटा है, वो क्या कर पाता उसका, यमदूतों को भगा पाता? लेकिन नारायण जैसे ये शब्द कहा, 4 विष्णु दूत आ गए और यमदूतों को खदेड़ दिया, उसको छुड़ा दिया मृत्यु के मुख से। तो भगवान के शरण में जाने में इतने लाभ हैं, पर हम लोग अज्ञान वश ये सारी चीज़ें जानते नहीं हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। भगवान की भक्ति करना, ये यथातर मूल निषेचने न तृप्यंती तत्र भुजो उपसाखा प्राणोपहारश्च थे इंद्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम् अच्युतिज्या। भगवान की भक्ति करने से सब कुछ होता है, जैसे पेट को अन्न देने से समस्त इंद्रियां संतुष्ट रहती हैं, जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष संतुष्ट रहता है। उसी तरह से देवी देवताओं की पूजा जो है उसकी इच्छा के अनुसार होता है। मतलब जैसे एक छोटा बच्चा किसी सिगरेट की दुकान में जाए और कहे कि मुझे 5-5 सिगरेट दे दो, 1 रुपया कितने में मिलता है पता नहीं, जो भी रुपये में मिलता होगा, तो वो दुकान वाला क्या बोलेगा? या जाए उसको बोले गुटखा का पैकेट दे दो, तो दुकान वाला क्या बोलेगा? अरे यार तुम छोटा बच्चा है, तुमको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, भागो घर में जाओ, बोलेगा? वो बोलेगा मेरा 1 सिगरेट बिक जाएगा, बच्चा हो चाहे कोई भी हो, हाँ उसको वो पैसा ले लेगा, उसको सिगरेट दे देगा। लेकिन अगर बच्चा जाके अपने पिताजी से कहे, 5 बरस का बच्चा, पिताजी आप भी दारू पीते हो, हाँ 1 पैक मैं भी मार लेता हूँ या 1 सिगरेट मुझे भी दे दो, मैं भी पी लेता हूँ, तो पिता क्या करेगा? उसको बोलेगा हाँ बेटा तू मेरे 5 चिन्हों में फॉलो कर रहा है, बहुत सही मार्ग पे जा रहा है, आजा दे देता हूँ, देगा? 1 थप्पड़ देगा उसको। क्यों? क्योंकि मालूम है उसको ये नुकसानकारक है, ये बच्चा पिएगा तो इसका इससे नुकसान होगा। उसी तरह से भगवान जो है, भगवान भक्त को वही चीज़ देते हैं जिससे उसकी उन्नति हो, भगवान भक्त को वो चीज़ें नहीं देते जिसका उसके अधोगति हो, उसका नुकसान हो। लेकिन डेमी गॉड्स ये पूछते नहीं हैं। जैसे वृकासुर था, आपने सुना होगा नाम उसका, वो वृकासुर जो था लॉर्ड शिवा का वर्शिप कर रहा था और लॉर्ड शिवा से प्रसन्न होकर के वो कुछ मांगना चाहता था, तो इसके लिए अपने शरीर का अंग काट काट करके, मांस काट काट करके लॉर्ड शिवा के शिवलिंग पे चढ़ाते जा रहा था। शिवजी परेशान हो गए, एक दिन वो इतना उद्दत हो गया कि कहा कि आज अगर आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो अपनी मुंडी काट के चढ़ा दूंगा। तो जैसे तलवार निकाला मुंडी काटने के लिए, शंकर जी प्रकट हो गए, बोलो क्या चाहिए तुमको, बोलो। कहा कि मुझे ऐसा एक वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के भी सिर पे हाथ रखूँ वो ब्लास्ट हो जाए। देखो इतनी तपस्या करके, शरीर का अंग काट काट करके तपस्या किया, मांगा क्या? ये राक्षसी बुद्धि है। मुझे वोट दो और मैं क्या करूँगा, तुम्हारा ब्लास्ट कर दूंगा। हाँ सो शिवजी ने क्या किया? शिवजी ने नहीं बोला अरे तुम कैसा वरदान मांग रहा है, दिस इज डेंजरस, ये तुम्हारे लिए भी डेंजर है, पूरी जगत के लिए डेंजर है। शिवजी ने उसको नहीं बताया। शिवजी ने क्या किया? यो मस्त, ठीक है ले जाओ, दे दिया उसको। और उसने क्या किया? उसने शिवजी के पीछे ही चक्कर, सामने देखा पार्वती खड़ी है, तो पार्वती बहुत सुंदर दिख रही है, तो वो सोचने लगा कि पार्वती का इंजॉय शिवजी क्यों करेंगे, मैं करूँगा, अभी मैं पहले शिवजी को रास्ते से हटाता हूँ। तो शिवजी के पीछे हाथ रखने के लिए सिर पर भागने लगा, अभी शिवजी परेशान, वो भागना शुरू कर दिए। यू नो दैट स्टोरी है ना, और किस तरह से भगवान जो है एक बच्चे का, ब्राह्मण बालक का रूप लेकर के आकर के उसको बोले अरे शिवजी जो वरदान देते उसमें कोई पावर नहीं होता है, अगर तुम टेस्ट करना चाहते तो अपने सिर पर हाथ रख के देख लो, कुछ नहीं होगा। हाँ वो भ्रम में आ गया, भगवान ने भ्रमित कर दिया उसको, भ्रम में आ गया और टेस्ट करने के लिए अपने सिर के ऊपर हाथ रख दिया और वो खुद ही ब्लास्ट हो गया, है ना। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। अगर कोई इस तरह से जाए भगवान के पास में मांगने के लिए, तो चैतन्य चरिता में एक कथन आता है, भगवान कहते हैं कि मुई भजे मांगे विशेष सुख, यही बड़ा मूर्ख, ये मेरा भजन करता है और इस भौतिक जगत का विशेष सुख मांगता है, ये तो बड़ा मूर्ख है। यही मूर्ख आमी विज्ञ, ये तो मूर्ख है लेकिन मैं तो बुद्धिमान हूँ। हाँ, यही मूर्खे विष के न दिवो, ये विशेष सुख इसके लिए विष के समान है, इसको मैं विष क्यों दूँ। स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई वो, मैं इसको अपना चरणामृत दे करके, इसको अपना भक्त बना करके, और इससे इस भौतिक जगत के प्रति जो आकर्षण है उसी को नष्ट कर दूंगा। ये उसके दुर्गति को समझ जाएगा तब ये भौतिक सुख मांगने का प्रयास ही नहीं करेगा, जिसके कारण वो इस जगत में आकर के फंसा हुआ है। तो भगवान क्या सोचते हैं? भगवान जो है भक्त की भलाई सोचते हैं। वो भक्त जो कुछ भी मांगेगा वो नहीं देते, उसके लिए आवश्यक जो है वो देंगे। और डेमीगॉड वर्शिप करने में जो नियम कानून है वो बहुत सख्त है, थोड़ा सा मिस्टेक गड़बड़ हो जाएगा। एक त्वष्टा करके एक ये थे, ब्राह्मण थे, तो वो ब्रह्मा इसके लिए इंद्र के लिए एक यज्ञ कर रहे थे, और इंद्र का यज्ञ, चूँकि वो ब्राह्मण थे भले लेकिन वो राक्षसों की कम्युनिटी से थे, तो राक्षसों की भलाई के लिए वो छुप करके राक्षसों के लिए भी उन्नति हो उसके लिए भी ऑब्लेशन डाल रहे थे और मंत्र जप कर रहे थे, तो इंद्र को पता चल गया, तो इंद्र ने क्या किया, उसको मरवा दिया। और जब मरवा दिया तो उसके पिता ने फिर दूसरे इसका ये किया और इंद्र के लिए तपस्या करने के लिए कहा कि इंद्र को मारने वाला कोई प्रकट हो, जिसमें वृत्रासुर की स्टोरी में आता है, ये भागवत में वृत्रासुर की स्टोरी बताई गई है। लेकिन वो जो ब्राह्मण मंत्र जप रहा था, वो मंत्र में एक होता है दीर्घ उच्चारण और एक होता है लघु उच्चारण, तो वो जब क्या रहा था, इंद्र सत्रोह स्वाहा, तो एक्चुअली सत्रोह ये अगर लॉन्ग उच्चारण करेंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाता है, और इंद्र सत्रु स्वाहा और ये उ जो है उसका स्लो उच्चारण करेंगे, मतलब जल्दी से उच्चारण करेंगे तो उसका अर्थ अलग होता है। तो वो गलत सलहबल उच्चारण करने से इंद्र को मारने वाले के बजाय इंद्र के द्वारा मारे जाने वाला प्रकट हो गया, पूरा यज्ञ क्या हो गया, उसका रिजल्ट उल्टा आ गया। मिस्टेक क्या हुआ था, सिर्फ मंत्र का उच्चारण। इसी तरह से डेमीगॉड्स के उच्चारण में अगर छोटा सा एक उच्चारण हो गया, बहुत सारे लोग जो है गायत्री मंत्र लेकर के फ़ोन पे बजाते रहते हैं, रेडियो में बजाते रहते हैं, सीडी में सुनते रहते हैं और ख़ुद भी जप करते रहते हैं, एक्चुअली वो मंत्र जपने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। बिना क्वालिफिकेशन के अगर वो मंत्र जपेंगे तो उसका उल्टा परिणाम होता है, हम लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ को, और हम लोग उसको क्या करते हैं, सोशल प्रेस्टीज के कारण उसको लेकर के मर्जी में आए अपनी इच्छा से बना लेते हैं। भगवान कहते हैं ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम अकारत स सिद्धिम न वापनोति न सुखम न पराम गतिम। ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा से कोई नियम बना करके और भगवान की भक्ति भी करता है, चाहे धर्म का भी कुछ आचरण करता है, उस व्यक्ति को उसके उस प्रयास में कोई सफलता भी नहीं मिलती है, और न ही तो उसकी अंतगति जो है वो ठीक ठाक होती है, नेक्स्ट लाइफ भी उसका ठीक ठाक नहीं होता है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणे न कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, इसीलिए शास्त्र के अनुसार अपने जीवन में जो भी करना है नहीं करना है सब कुछ शास्त्र के अनुसार करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर शास्त्र समझ में नहीं आता है तो जिसको समझ में आता है उससे कंसल्ट करके करना चाहिए। पर अगर कोई व्यक्ति कहे मेरे को शास्त्र पढ़ने नहीं आता है, संस्कृत नहीं आता है, तो फिर मैं ऐसे करूँगा तो अपने आप हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो अज्ञान हूँ। तो अगर कोई एक छोटा बच्चा जिसको अज्ञान नहीं है कि फायर क्या होता है, अगर वो फायर में उंगली डाले या फैन चलते हुए फैन में उंगली डाले, तो क्या फैन या फायर ये सोचेगा कि ये बच्चा है अबोध है, इसको नॉलेज नहीं है? फैन कहेगा मैं बंद हो जाता हूँ इसका, अपना ब्लेड से इसका उंगली नहीं काटूंगा, या फायर कहेगी कि मैं इसको जलाऊंगा नहीं, इसको नॉलेज नहीं है? तो नियम सबके लिए होता है। अगर हम गलती से भी अज्ञान के कारण भी नियम नहीं पालन करते हैं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम वास्तविकता की तलाश करें और उसके अनुसार अपने जीवन का आचरण करें। तस्मात् शास्त्र प्रमाणे न कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। भगवान की प्रक्रिया में लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान क्या कहलाते हैं, कहा गया है शास्त्र में, विष्णु पुराण में कहा गया है कि पंडितो वदति विष्णवे, मूर्खो वदति विष्णाय। अगर आपने ग्रामर पढ़ा होगा तो आपको ये मैं जो शब्द बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा। संस्कृत विभक्ति में संस्कृत का उच्चारण करते समय अगर किसी वस्तु को, हाँ, जैसे विष्णु कहना है तो विष्णु को कुछ अर्पण करना है तो हम क्या कहते हैं, इदम विष्णवे, वो उसका उच्चारण क्या है, विष्णवे, हाँ, विष्णु को दिया, विष्णवे, हाँ, पंडितो वदति विष्णवे, मूर्खो वदति विष्णाय। लेकिन विष्णु नहीं कहने आता है मूर्ख व्यक्ति को, वो कुछ और बोलता है। लेकिन भगवान क्या है, एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। जैसे एक बार प्रभुपाद जी को कुछ लोगों ने कहा कि प्रभुपाद आपके ये जो विदेशी भक्त हैं ये लोग भक्ति तो बहुत अच्छी करते हैं लेकिन मंत्र का उच्चारण जो है वो ठीक ठाक नहीं करते हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है इसका उच्चारण आप जानते हैं कैसा होना चाहिए, हरे कृष्ण अ है कृष्ण, लेकिन नॉर्मली लोग उच्चारण क्या करते हैं, हरे कृष्णा। कृष्णा किसका नाम है, कृष्णा किसका नाम है, फीमेल का नाम है, द्रौपदी का नाम है, समझ में आया ना। और हम पुकार किसको रहे हैं, कृष्ण को, पर गलती से किसको पुकार रहे हैं, है ना, राम, राम माने भगवान का नाम है राम, और रामा बोले तो रामा फीमेल का नाम है ना, लेकिन हरे रामा बोलते हैं ना लोग, तो किसको पुकारते हैं, रामा लक्ष्मी का नाम है रमा, है ना, तो किसको पुकारते हैं, लेकिन वही कहते हैं कि मूर्खो वदति विष्णवे और मूर्खो वदति विष्णाय पंडिता वदति विष्णवे, विष्णाय नहीं है विष्णवे है, हाँ, लेकिन उभयोर अपि दृष्टांतो भावग्राही जनार्दन, लेकिन भगवान जो हैं चूँकि वो भाव देखते हैं कि किसको बुला रहा है, जैसे अजामिल अपने बेटे को बुला रहा था लेकिन नारायण का नाम लिया तो भगवान ने क्या किया, नाम लिया ना, तो शास्त्रों में कथन है कि भगवान का नाम स्मरण करते समय अगर कोई भगवान का नाम स्मरण करता है तो साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो इसीलिए भावग्राही भगवान है। उसमें कुछ गलती भी हो गई तो क्या करेंगे भगवान, वो जो मैंने आपको उदाहरण दिया वो हराम कह रहा था लेकिन भगवान ने उसको कंसिडर कैसे किया, हे राम, दमष्टि दमष्टा हतो मलिक्षा, दमष्टि मतलब जो टस्कर है, हाँ, वो जा करके मलेक्ष को मार डाला, फिर भी मलेक्ष जो है वो क्या किया, वो विष्णु स्वरूप पा करके भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। तो डेमी गॉड वर्शिप में शक्ति है, गलती हुई तो माफ़ नहीं होगा, पर भगवान की वर्शिप में शक्ति नहीं है, ये जानना आवश्यक है। देवी देवताओं की पूजा, देवी देवता कितने हैं, 33 करोड़ हैं, अगर आप पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर डेली उनकी पूजा करोगे तो भी यू कैन सी दिस कैलकुलेशन, हाँ, 3820 डेमीगॉड्स पर सेकेंड आपको वर्शिप करना पड़ेगा, इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली, अगर पेड़ के पत्ते को, एक एक पत्ते को पानी देना चालू करो कितने पत्ते होते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव टू ऑल, बुद्धिमानी किसमें है, रूट में पानी डाल दो सबके पास पहुंच जाएगा, इसीलिए कृष्ण कौन है, रूट है, कृष्ण की भक्ति करने से सारे डेमीगॉड प्रसन्न हो जाते हैं और जो कृष्ण की भक्ति नहीं करता है उससे कोई नहीं प्रसन्न होता है। एक बार आपको बताऊं, एक दो भाई थे, बताया था ये स्टोरी, दो भाई थे, दोनों ब्राह्मण थे, एक विष्णु का भक्त था और एक देवी का भक्त था, काली का। तो विष्णु का भक्त जो था वो बड़ा गरीब था, उसके पास में कुछ नहीं था, लेकिन जो देवी का भक्त था, काली का जो भक्त था वो बड़ा पैसे वाला था, उसके पास में गार्डन था, बगीचा था, घर था। तो एक दिन उसके गार्डन के बगल से उसका दूसरा भाई जो गरीब है वो जा रहा था, उसने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, उसके मन में आया कि भाई के गार्डन में इतने अच्छे फूल खिले हुए हैं, ये फूल मैं भगवान को ऑफर कर देता, पर सोचने लगा अगर फूल तोड़ने जाऊँगा और उसने देख लिया तो वो झगड़ा करेगा, तो वो फूल ऑफर नहीं किया। उसने क्या किया, उसके मन में इतना अभिलाषा हुई भगवान को फूल ऑफर करने की कि वो पेड़ पर से ही भगवान को ऑफर कर दिया, कृष्णाय समर्पित, हाँ, कृष्ण को पेड़ पर से ही ऑफर कर दिया। तो उसका दूसरा भाई बाद में आकर के वो फूल तोड़ के लेके गया और देवी को ऑफर किया, काली को, और जब देवी को ऑफर किया तो काली बहुत प्रसन्न हो गई, उसका चेहरा खिल गया, इसने काली का चेहरा देखा कि आज काली इस तरह से प्रसन्न दिख रही है, तो उसने काली को पूछा कि मैं हर रोज आपका वर्शिप करता हूँ पर आज के वर्शिप से आप कितना प्रसन्न क्यों हुई। तो काली ने कहा कि आज तुमने मुझे मेरी इच्छित वस्तु दिया है, हमको भी जो इच्छा चाहिए, जो चीज़ मिलना चाहिए, अभिलाषा होती है, अगर वो मिल जाए तो खुशी होती है कि नहीं। तो काली ने कहा कि आज आपने मुझे मेरी इच्छित वस्तु दिया है। उसने कहा क्या दिया, यही फ्लावर तो मैं हर रोज़ देता हूँ आपको। कहा नहीं, आज तुमने मुझे भगवान का प्रसाद दिया है, आज तुमने मुझे क्या दिया है, भगवान का प्रसाद दिया। उसने कहा कैसे भगवान का प्रसाद, मैं तो कहीं किसी को दिया नहीं, ऑटो डायरेक्ट पेड़ से लाके आपको दिया। उसने कहा कि नहीं, ये पेड़ पर ही तुम्हारे भाई ने भगवान को अर्पित कर दिया था, भगवान ने इसको स्वीकार कर लिया और उसको तोड़ करके तुमने मुझे दिया, तुम इसलिए मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ। वो आदमी सोचने लगा कि अगर इस तरह से भी काली को मैं अपना प्रसन्न करने की कोशिश करता रहा, नहीं हुई, और ये काली जो है भगवान का एक फ्लावर ऑफर किया हुआ मिल गया तो इतनी प्रसन्न हो गई। तो डेमी गॉड्स की जिनकी हम वर्शिप करते हैं, कभी हम उनकी इच्छा क्या है उसके बारे में विचार करते हम क्या करते हैं, हम केवल अपनी इच्छा के बारे में विचार करते हैं। और हम अपनी इच्छा के बारे में विचार करके, जैसे वो वृकासुर जाकर के शंकर जी को ऑफर कर रहा था काट काट के, और शंकर जी जो है वो परेशान हो रहे थे। काली को लोग जाकर के मुर्गी बकरी इत्यादि काटते रहते हैं, लोगों को लगता है काली खाती होगी, काली नहीं खाती है। वो क्या करती है, उसके साथ जो हॉब गॉब्लिंस घोस्ट इत्यादि घूमते रहते हैं वो उनको दे देती है, वो खुद नहीं खाती, वो वैष्णवी है। लेकिन उसको मालूम है ये मूर्ख लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, तो सी इज डिसगस्टेड विथ सच पीपल। तो हमको भी सोचना चाहिए कि डेमीगॉड्स क्या चाहता है, वो कैसे प्रसन्न होगा। डेमीगॉड्स इससे नहीं प्रसन्न होता है कि हम उसको जा करके किसी की हत्या काट करके चढ़ा दें। तो जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति के लिए डेमीगॉड को वर्शिप करेगा, डेमीगॉड उसको गाइड करेंगे जा करके किस तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि डेमीगॉड का वर्शिप करने से डेमीगॉड अप्रसन्न होंगे, नहीं, वो आपका बहुत प्रसन्न होंगे, आपका बहुत लाभ करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि एक व्यक्ति जो मेरे शरण में आया था उसको सही मार्ग मिल गया। अगर यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं जो प्रचार कर रहा हूँ, इसमें से अगर आप में से कोई एक जन भी अच्छा भक्त बनेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। आप अगर आपका एनर्जी डाल रहे हैं कहीं पे और उस चीज़ को कोई सही तरीके से यूज़ करता है तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। उसी तरह से डेमीगॉड्स को भी फीलिंग आती है कि मेरे पास आने वाला ये व्यक्ति जो है अब सही मार्ग पर गया है, भगवान की भक्ति कर रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, पर समय के कारण हम लोग उतना सारा उदाहरण समझा नहीं सकते हैं। इसीलिए निष्कर्ष क्या है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजत पुरुषः परम। तो फिर कहेंगे कि ओके, देवी देवताओं के प्रति हमारा वर्ताव कैसा होना चाहिए, क्या हम उनको रिजेक्ट करना चाहिए, उनके प्रति हमारा वर्ताव सही नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए क्या होना चाहिए, जैसे हमारा वर्ताव उनके प्रति रिस्पेक्टफुल या आदरपूर्वक होना चाहिए। हमको मालूम होना चाहिए कि दे आर ऑल्सो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के इस ऑर्गेनाइजेशन में वो सेवा संचालित कर रहे हैं। जैसे पुलिस कमिश्नर के साथ हम पुलिस बल की भी आदर करते हैं, है ना, या पुलिस कमिश्नर आता है तो पुलिस को रिजेक्ट करते हैं और पुलिस कमिश्नर का आदर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से बहुत अच्छा प्रेम करता है लेकिन उसके बच्चे को थप्पड़ मारता है, गाली देता है, उसको तिरस्कृत करता है, तो उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा कि ये व्यक्ति मेरे बच्चे को गाली दे रहा है। आप ही हैं, आपको तो कोई बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर आपके बच्चे को, आपके पत्नी को, आपके रिलेटिव को अगर वो डिसरिस्पेक्ट करता है तो विल यू बी हैप्पी? नहीं। इसी तरह से भगवान जो है वो भी चाहते हैं कि देवी देवताओं के प्रति हमारा अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो, हमारा डीलिंग उनके प्रति आदरपूर्वक होना चाहिए। हाँ, वो सेवा में है, क्योंकि देखो सारे डेमीगॉड्स क्या करते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ हथियार लेकर के सेवा में उद्दत रहते हैं। उसी तरह से हमें देवी देवताओं की भी सम्मान करना चाहिए, परंतु पूजा केवल भगवान श्री कृष्ण की करनी चाहिए, ये रियल अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैंने ये प्रश्नों का उत्तर आपको इस डिस्कशन में दे दिया। हाँ, वेदों में देवी देवताओं की पूजा का विधान ही क्यों है ये नहीं बताया मैंने शायद। हाँ, तो आप ये पूछेंगे कि अगर डेमी गॉड वर्शिप करना इतना आवश्यक नहीं है तो इनका विधान क्यों है। पर भगवान जब अर्जुन को चौथे अध्याय में भगवद्गीता के नॉलेज देते हैं और अपने बारे में बताते हैं, तो अर्जुन सोचता है कि प्रभु इस जगत में ऐसे भी मेंटालिटी के लोग होंगे, हाँ, जो आपको स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्या फिर आपके शरण में वो नहीं आ सकते किसी तरह से भी। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं सबका उद्धार करना चाहूँ लेकिन हो सकता है कि कोई व्यक्ति को मैं पसंद नहीं हूँ, तो फिर क्या उस व्यक्ति का उद्धार नहीं होना चाहिए? भगवान उस व्यक्ति को रिजेक्ट कर देंगे? भगवान कहते नहीं, मैं उसका भी रिजेक्ट नहीं करता हूँ, मैं ऐसे लोगों के लिए दूसरा फैसिलिटी क्रिएट किया हूँ, उनके उनको मेरी शरण में लाने के लिए दूसरा फैसिलिटी, और वो इनडायरेक्ट तरीका है। जो डायरेक्ट वर्शिप नहीं करते मुझे, उनके लिए मैं इनडायरेक्ट वर्शिप करता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो लोग डेमी गॉड का वर्शिप करते हैं ते भी मामे व कौन थे, लेकिन वो मेरी ही पूजा करते हैं अर्जुन अविधिपूर्वकम, ते भी मामे व कौन थे यजनते अविधिपूर्वकम, लेकिन अविधि से करते हैं। तो भगवान ये अविधि का उनको क्यों देते हैं? भगवान कहते हैं कि जो लोग भगवान की देवी देवताओं को पूजा करना चाहते, मेरा वर्शिप नहीं करना चाहते, उनको बुद्धि भी मैं ही देता हूँ कि वो देवी गॉड्स के वर्शिप में देवी देवताओं का वर्शिप करते रहें। क्यों? क्योंकि जो करते रहेंगे तो उनको एटलीस्ट वर्शिप करने का आदत रहेगा, है ना। अगर डेमी गॉड का भी वर्शिप नहीं करेंगे तो वर्शिप करने का आदत ही नहीं है, जानते ही नहीं वर्शिप कैसे किया जाए। तो जब नॉलेज आएगा तो फिर क्या करेंगे? पर जो डेमी गॉड का वर्शिप कर रहे हैं पर उनको अच्छा नॉलेज आ गया कि अब क्या करना चाहिए, तो दे कैन, उनका जो मनोस्थिति है, जो भावना है जो डेमी गॉड के प्रति है, वो भगवान के प्रति एज इट इज शिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो लोग भगवान को समर्पित नहीं होते हैं डायरेक्टली, उनको इनडायरेक्ट तरीके से भगवान जो है समर्पित कराने के लिए, उनको इनडायरेक्ट तरीके से अवसर देने के लिए शास्त्रों में, क्योंकि शास्त्र जो है मैनुअल है, तो अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट नहीं कान पकड़ता है तो उसको घुमा करके कान पकड़ना, पर उसको सही मार्ग पे लाना है। इसीलिए डेमी गॉड वर्शिप का प्रपोजल है, अन्यथा डेमी गॉड वर्शिप प्रपोजल इसका कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आवश्यकता कब तक है? जब तक हम ट्रेंड नहीं हुए हैं, जब तक हमने भगवान को नहीं समझा है, भगवान को नहीं जाना है। और भगवान की कृपा से अगर हमने भगवान को जान लिया, उसके बावजूद भी कृष्ण की पूजा करके क्या मैं अपने आराध्य देवता का अपमान नहीं कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली उसका आदर कर रहा हूँ, वो बहुत प्रसन्न होगा। ये हमको समझना चाहिए। और यदि मेरी भौतिक इच्छाएँ हैं तो क्या करूँ? तो मैंने अभी बताया, अकाम सर्व काम हुआ, भगवान की शरण में चले जाइए। भगवान आपकी इच्छा की भी पूर्ति करेंगे और आपका जो वो भौतिकता का मटेरियलिस्टिक कंडीशनिंग है उसका क्यूर भी करेंगे, उसको शुद्ध भी करेंगे, जिससे कि क्या होगा, डेमी गॉड्स तो उसको शुद्ध नहीं करेंगे, वो तो सर सप्लाई कर देंगे, लेकिन भगवान जो है उस बुद्धि को शुद्ध करेंगे, हमारी बुद्धि को शुद्ध करें। इसलिए ध्रुव महाराज को जब भगवान ने ऑफर किया कि मैं तुमको ये प्लैनेट देता हूँ, तो ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं दुर्बुद्धि के कारण आप जैसे हीरे को प्राप्त करके ये भौतिक संसार के सुख रूपे कांच के टुकड़े को मांग रहा था। ये कांच का टुकड़ा अगर मैं अपने हाथ में रखूँगा तो क्या करेगा? ये कांच का टुकड़ा मैं अपनी जेब में रखूँगा तो क्या करेगा? मेरे शरीर को काटेगा ही, खून बहाएगा, है ना, मेरा नुकसान ही करेगा। तो ये भौतिकता का भी जो भी कुछ हम मांगते हैं भगवान से, वो एक्चुअली हमारा नुकसान करने वाला होता है। पर बुद्धि नहीं होने के कारण हम कांच के टुकड़े को अपनी जेब में रखते हैं, पर उन्होंने कहा कि मुझे कांच के टुकड़े नहीं चाहिए। अब देखो, जो व्यक्ति भगवान से एक राज्य मांगने गया था, ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य मांगने गया था, उसको वो राज्य निरर्थक कांच का फूटा हुआ टुकड़े की तरह से लगने लगा। किसके कारण? क्यों? क्योंकि भगवान ने उसकी मति को शुद्ध कर दिया। इसीलिए भगवान की शरण में जाने से हमारी मति जो है वो शुद्ध होती है, और जब हमारी मति शुद्ध होती है तब हमारी गति शुद्ध होती है, तब हमारी रति कृष्ण में लगती है, और तब हम कृष्ण को ही अपना पति मानते हैं। कृष्ण को छोड़ करके इस जगत में और हमारा कोई नहीं होता है। तब हम रिजॉल्व करते हैं, कृष्ण मेरे पति हो, उनमें ही मेरी गति हो, उनमें ही मेरी रति हो, ऐसी मेरी मति हो। समझ में आया? इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम भगवान को समझें, डेमी गॉड्स को समझें। हम लोग डेमी गॉड्स के अगेंस्ट में नहीं है, इनफैक्ट दे आर वर्सिपेबल पीपल, दे आर रिस्पेक्टफुल पीपल, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन भगवान को, जो भगवान का पोजीशन है उसके अनुसार भगवान का पोजीशन, उनका जो पोजीशन है उसके अनुसार उनका पोजीशन। अगर किसी प्यून को डायरेक्टर बोलेंगे और डायरेक्टर को प्यून बोलेंगे, तो क्या प्यून जो है अपने आप को डायरेक्टर का संबोधन सुन के बहुत खुश हो जाएगा? उसको लगे ये व्यक्ति मेरे को चिढ़ा रहा है, ये मेरे जो पोजीशन है उसके प्रति ये क्या कर रहा है, मेरा उपहास कर रहा है, है ना। और डायरेक्टर को अगर प्यून कहेंगे तो डायरेक्टर क्या कहेगा? दिस पर्सन डजंट नो मी, ही इज़ यूजलेस। इसको समझाओ कोई कि किसको क्या संबोधन करना चाहिए, किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। उसी तरह से भगवान को भगवान संबोधित करना चाहिए, भगवान के भक्त को भगवान का भक्त संबोधित करना चाहिए। डेमीगॉड्स जो भगवान के भक्त हैं और भगवान के क्रियाकलाप में लगे हुए हैं, उनको उसी पोजीशन से उनको उसी तरह का रिस्पेक्ट देना चाहिए और उसी तरह से उनके साथ मान सम्मान के साथ आचरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस? यस प्रभु।
ये कोई संदेह नहीं है, ये कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन डेली मेरा एक प्रश्न ऐसा पूछो पड़ता है कि अगर इतना सब कुछ है जो सच है, उसमें तो शंका ही नहीं है, कोई भी शंका नहीं, तो हर जैसे आप वो बता रहे थे कि जब शिशु जन्म लेता है तो 6 महीने के बाद उसको क्या 100 जन्म याद आते हैं, वो भगवान को बोलता है छुड़ा दे, तो फिर भूल क्यों जाते हैं हम? वो शिशु भूलता क्यों है कि भगवान है? जैसे मैं खुद हूँ, मेरी भी तो उम्र आज कितनी होगी, आज थोड़ा बहुत कुछ मतलब वाकई थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया, ये ज्ञान तो मरते दम तक किसी को भी नहीं मिलेगा, तो वो पहले क्यों नहीं हुआ, ये बुद्धि भगवान क्यों नहीं दिखती, ऐसा एक मन में सवाल आता है।
वेरी गुड क्वेश्चन।
मुझे नहीं पता,
ये हम लोग लास्ट सेशन में जो डिस्कस करेंगे ना, कर्म का सिद्धांत है, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है जब हम गर्भ में रहते हैं, मुश्किल क्या होता है जानते हैं? वो कबीरदास का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कबीरदास एक कविता में लिखता है, हाँ, सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुना है? इसका अर्थ क्या है? जब दुख होता है तब हम लोग भगवान को पुकारते हैं, है ना, लेकिन जब सुख आ जाता है तो फिर हम भगवान को भूल जाते हैं। तो जब गर्भ में रहते हैं तो वो पैक कंडीशन है, दुख का कंडीशन है, हाँ, मलमूत्र में सो रहे हैं, कीड़े खा रहे हैं, और वहाँ से हम अगर हिलना चाहें तो हिल भी नहीं सकते हैं, है ना, माँ ने कुछ तीखा मीठा खाया, उसमें से कुछ एसिडिक वगैरह जो निकला वो भी जाकर के मेरे टेंडर चमड़ी को जलाता है। अगर आप अपना चमड़ी को जरा घसड़ करके उस पर नमक डाल के देखिए कैसा लगता है, ये तो स्ट्रांग हो गया। फिर भी बच्चे का चमड़ी तो कैसा होता है, एकदम टेंडर होता है। कुछ माँ लोग जो है सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग जो है दारू भी पीते हैं गर्भ में जब तक बच्चा है, तो वो सारा चीज़ें बच्चे को भुगतना पड़ता है, ये उसके लिए हॉरिबल कष्ट है, वो एक ऐसे काउच बनकर के बैठा रहना पड़ता है, ही कैन नॉट स्ट्रेच हिज हैंड्स, ही कैन नॉट स्ट्रेच हिज लेग, उसका अपना मुंडी सीधा नहीं कर सकता है, है ना, और वो एक गनी बैग के अंदर ऐसे लगता है जैसे उसको बांध के रख दिया गया है, अपनी इच्छा से वो निकल भी नहीं सकता है, अपनी इच्छा से कहीं जा भी नहीं सकता है, कुछ खा भी नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। इनफैक्ट गर्भ में रहते रहते वो जो टट्टी पास करता है वही टट्टी खुद खाता है, और डॉक्टर लोग बोलते हैं कि वो टट्टी जो है ग्रीन कलर का हो जाता है, और जितना ही वो ग्रीन होता है इसका मतलब वो बच्चे ने उसको उतनी ही बार रिपीटेडली खाया है और उसको टट्टी पास किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से हिल नहीं सकता है। तो जब कष्ट रहता है तो कष्ट के समय हम किसको पुकारते हैं? भगवान को पुकारते हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर आ जाते हैं, यद्यपि हम रोते रोते आते हैं, पर हमारे माँ बाप, हमारे रिलेटिव्स वो क्या शुरू कर देते हैं, वो चाचो चाचो है ना, है कि नहीं है, उसको पप्पी लेते हैं, उसको ये करते हैं, वो सोचता है कि आई एम द सेंटर ऑफ लाइफ। यद्यपि वो अभी छोटा बच्चा है फिर भी वो क्या सोचता है, आई एम द सेंटर ऑफ लाइफ। वो थोड़ा सा कैंका किया तो माँ बाप तुरंत भाग के आ जाते हैं, है ना, उसको लगता है ये सब लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वहीं से उसका भ्रम शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हो गया वो कष्ट? अब बाहर आने के बाद नहीं है, मखमली बिस्तरा मिला है सोने के लिए, हाथ पैर फेंक सकता है, कोई आके चू 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 किया तो हंसना भी शुरू कर देता है, और जब वो हंसता है तो माँ बाप और प्रसन्न हो जाते हैं, खिलौना बजाते हैं, टिन 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 टिन, घोड़ा दौड़ाते हैं, उसको ये लगे चलाते हैं, वो सोचता है दिस लाइफ इज माई फॉर मी, एवरीथिंग आई एम एंजॉइंग हियर। थोड़ा सा रो दिया, बाजार में गया, माँ मुझे ये चाहिए, माँ ने कहा पैसा नहीं है, माँ उधार लेके उसको खरीद के देती है, ही थिंक्स दैट आई एम द फोकस ऑफ एवरीबडी। ये भ्रम जो है वो धीरे धीरे पालना जब शुरू करता है तो वो भगवान को स्मरण करने के बजाय उसके जो रिलेटिव्स होते हैं उसको किसका स्मरण कराते हैं, यू आर सेंटर ऑफ एक्टिविटी। फिर बाद में वो सोचने लगता है कि मैं ही सेंटर ऑफ एक्टिविटी हूँ, तो आगे चल करके भी वो जो कुछ भी करना चाहता है, जो कुछ भी करता है, हर परिस्थिति में क्या सोचता है, हर चीज़ मेरे लिए होना चाहिए, रेलवे किसके लिए चल रही है? मेरे लिए चल रही है। प्लेन किसके लिए उड़ रही है? मेरे लिए चल रही है। घर में खाना किसके लिए बन रहा है? मेरे लिए बन रहा है। टेलर किसके लिए सी रहा है? मेरे लिए सी रहा है। सबको मैं अपने पैसे से क्या कर सकता हूँ? नचा सकता हूँ, है ना। वो जब अपने आप को इस तरह से सोचने लगता है तो वो भोगी बनना शुरू हो जाता है। अभिमन्यु ने भी अपने माँ के पेट में सीखा था कुछ, है ना। उसकी माँ ने उसको क्या सिखाया था? माँ ने कुछ बताया था नहीं, अपने पिता का उसने ध्यान से सुना था चक्रव्यूह में एंट्री का एपिसोड, और बाहर आने का एपिसोड नहीं सुन पाया था, तो इसलिए बाहर आने के बाद में वो मौसम नहीं मिला उसको। हिरण्यकश्यपु की पत्नी थी कयादु, नाम सुना है? कयादु के गर्भ से कौन पैदा हुआ? प्रहलाद महाराज, है ना। प्रहलाद महाराज को ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? भगवत ज्ञान। प्रहलाद महाराज जब पढ़ने की उम्र में आए तब तो उनके पिता ने उनको राक्षसी विद्या सीखने के लिए संड और अमर्क के स्कूल में भेज दिए थे, संड एंड अमर्क इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो भी बोल दीजिए, उसमें भेज दिया था उसको राक्षसी विद्या पढ़ने के लिए। क्या विद्या पढ़ने के लिए? हाउ टू हैव पावर, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू मेक थिंग्स सेंटर ऑफ, हाउ टू मेक यू इन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और वो जब उसको पहली बार पूछा कि तुमने अपने टीचर से सीखा क्या, और उसने क्या बताया, मैंने क्या सीखा, उसने कहा कि मैंने ये सीखा, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। उसके पिता ने पूछा कि तुम्हारे टीचर लोग ने ये पढ़ाया तुमको? टीचर की तरफ देखा, टीचर घबरा गए कि अभी हमारा क्या होगा। टीचर लोगों ने हाथ जोड़ लिया, बोला हमने नहीं पढ़ाया इसको, ये पता नहीं कहाँ से सीख के आया है। और उसने कहाँ सीखा था? वो अपने माँ के गर्भ में नारद ऋषि से सुन करके सीखा था, समझे। तो जब एक बार कोई व्यक्ति कोई चीज़ सुन लेता है, अभी मुझे आप बताइए, जब शिशु गर्भ में होता है तो हम में से कितने लोग उसको भागवत सुनाते हैं, कितने लोग उसका लिए नाम जप करते हैं, उसका नाम स्मरण कराते हैं, कितने लोग ऐसा केयर करते हैं कि ये बच्चे को केवल प्रसाद ही खाने को मिले, कितने लोग केयर करते बताइए। लेकिन इतना कुछ लोग करने के बावजूद भी जब बच्चा बाहर आता है ना, तो बाहर का खिलौना, बाहर की दुनिया, बाहर का तमक झमक, ये सब देख करके क्या होता है? इवन सुखदेव गोस्वामी ने अपने माता के गर्भ से निकलने के लिए मना कर दिया, मैं नहीं निकलूंगा इसमें से। क्यों नहीं निकलूंगा? बाहर माया बहुत प्रबल है, माया मुझे आकर्षित कर लेगी, इसलिए मैं अपने माँ के गर्भ में ये कष्ट सहूंगा लेकिन निकलूंगा नहीं। 16 बरस तक वो माँ के गर्भ में पड़े रहे। जब कृष्ण ने आकर के उनको आश्वासन दिया कि नहीं तुम निकलो, मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तब क्या हुआ? तब जाकर के वो गर्भ से बाहर निकले। जब गर्भ से बाहर निकले तो जिस माँ ने पैदा किया, 16 साल तक गर्भ में रखा, जिस पिता ने इतने कष्ट सहे उनको पालने पोषने के लिए, उनके तरफ देखा तक नहीं, गर्भ से निकल के सीधा जंगल की तरफ भाग गए। अगर आपका बेचा आपके गर्भ से निकल करके और सीधा जंगल में भागे तो क्या करेंगे? तो दैट ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। सो हम लोग जैसे ही गर्भ से बाहर आते, एक तो माया का प्रभाव, हमारा पूर्व कर्म का प्रभाव, और दूसरा हमारे अगल बगल में जो लोग होते हैं वो लोगों का हमारा जो ट्रेनिंग है। हाँ, बच्चा कहाँ से सीखता है? माँ बाप से सीखता है, घर के कल्चर से सीखता है, पीयर ग्रुप से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है। तो इन सब के प्रति आज आप बताइए मुझे कि बच्चा जो है ये अगर भुलावे में पड़ता है तो उसकी क्या गलती है? गर्भ में तो स्मरण किया भगवान को, लेकिन बाहर आकर के उसको स्मरण करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। पर भगवान की कृपा से जब कभी अवसर पाता है और इस तरह से कोई आकर के सुनाता है, तब उसको लगता है अरे मैंने कुछ गलती कर दिया। परीक्षित महाराज जब अपनी माँ के गर्भ से निकले थे तो सबको, क्योंकि परीक्षित महाराज ने अपने माँ के गर्भ में ही भगवान कृष्ण को देखा था, जो उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ पहुँच गए थे, और बाहर आकर के सबको ढूंढ रहे थे, इसमें कृष्ण दिख रहा है क्या, इसमें कृष्ण दिख रहा है क्या, वैसा दिख रहा है क्या, इसके लिए उनका नाम परीक्षित पड़ गया। तो हम में से कितने लोग बचपन में आकर के पूछते हैं? हम तो ABCD पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छोटका एप्पल, है ना, ये सब पढ़ना शुरू कर देते हैं। और बाद में फिर धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमको भगवान का ज्ञान कौन देता? हमारा आजकल का एजुकेशन सिस्टम क्या है? हमारे माँ बाप भी भगवान का ठीक से ज्ञान नहीं देते हैं, माँ बाप ही किसी और का वर्शिप करते रहते हैं, है ना। बच्चा पूछता है कि आप इनको अगरबत्ती क्यों घुमाते? मालूम नहीं, मेरे माँ बाप घुमाते थे, मैं भी घुमाता हूँ, है ना। भगवान को लैंप क्यों ऑफर करते पता नहीं, वो करते थे मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करना। तो वो वही सोचता है बस यही करना है मेरे को आगे जा करके। ओके यस मान्यता है, यस सच है ये। लेकिन भगवान भगवत गीता में एक सिद्धांत बताते हैं, यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजत अंते कलेवरम। आप कौन से डेट को त्यागते हैं देह है, ये गुड है। जैसे कोई व्यक्ति जो है किसी डॉक्टर के घर में पैदा हो जाएगा, माँ भी डॉक्टर, भाई भी डॉक्टर, पिता भी डॉक्टर, बहन भी डॉक्टर, उसके घर में पैदा हो जाएगा तो ही हैज़ नाइस दिस थिंग अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए डॉक्टर, राइट। पर अगर वो अपना क्रेडेंशियल प्रूव नहीं करे तो वो डॉक्टर बनेगा। तो एकादशी हो चाहे द्वादशी हो चाहे कोई भी शुभ दिन हो, उस दिन भी अगर हमने भगवान का अपना ये शरीर त्याग किया तो उससे हमको लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन शरीर छोड़ते समय हमारी मति में क्या है, समझ में आया ना? क्या जीवन भर हमने हमारे शरीर छोड़ने के लिए एकादशी द्वादशी का चिंतन किया है, समझ में? तो भगवान आपको बेनिफिट देंगे, पर पहला सिद्धांत क्या है, यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजत अंते कलेवरम तंतम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हम भले एकादशी को शरीर छोड़ें, द्वादशी को शरीर छोड़ें, या तो वृंदावन में जाके शरीर छोड़ें, लेकिन हमारी भावना जो है वो भोग की है, शुद्ध नहीं हुई है भावना, तो फिर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त करना है तो हमारी भावना को उस तरह से बनाना पड़ेगा। और कृष्ण भावना अमृत जो है दैट इज कॉल्ड एकल्चरेशन, इट्स लाइक ए कल्चर, यू हैव टू अडॉप्ट इट राइट एंड देन कल्टिवेट इट, समझ में आया ना? अगर किसी बीए को उगा करके उसको वृक्ष बनाना है, इट्स नॉट वन डे अफेयर। बीए को बोने के लिए पहले भूमि को बनाओ, उसके बाद में जब वो अंकुरित होता है तो फिर उसकी रक्षा करो, उसको जल पानी दो, हाँ, और तब जाकर के जब धीरे 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 वो बढ़ता है तब स्ट्रांग बनता है। मैंने आप लोग को उदाहरण दिया था, सुना होगा शायद यहाँ पे, कि अगर छोटा पत्ता है, छोटा पेड़ है, अभी जस्ट अंकुर निकला है, आम का वृक्ष है, इतना बड़ा अंकुर निकला है, उसमें अगर आप एक चिड़िया को भी बांध देंगे तो क्या करेगी? चिड़िया खींच के उसको तोड़ सकती है ना? हाथी को बांधेंगे तो हाथी तो कभी भी ट्रैम्पल कर सकता है उसको। लेकिन वही आम का वृक्ष अगर आपने पाल पोस करके उसको इतना मोटा और बड़ा कर दिया है, फिर उसमें उस हाथी को बांधेंगे तो खींच पाएगी? तो अगर आपने जीवन भर ट्रेनिंग लिया कृष्ण भावनामृत का, तो अंत में कैसा भी सिचुएशन आएगा, लेकिन आप उस सिचुएशन से भटकेगा नहीं हमारी मति, समझ में आया? लेकिन अगर हमने ट्रेनिंग नहीं दिया है, अभी तो कृष्ण भावनामृत हमारे हृदय में अंकुरित भी नहीं हुई है, और हमको लगे कि हमको वो फल मिल जाएगा, इम्पॉसिबल। ओके, सो ट्रेन योर सेल्फ। हाँ भागवत में तो ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन दूसरे शास्त्रों में ये बताया गया है कि ये 108 बार नाम नहीं जप करवाया था, जब जब वो किसके हिरण्यकश्यपु के मुख से निकला था, क्योंकि हिरण्यकश्यपु जो है वो उस समय जब वो गर्भाधान संस्कार कर रहा था तो उस समय उसको एक एपिसोड याद आया, उसने उसको बर्ड्स के भी जो ये है लैंग्वेज उसको जानता था वो। सो वाइल टॉकिंग टू हिज वाइफ ही एक्चुअली रिफर्ड टू सम बर्ड्स दे वर टॉकिंग अबाउट कृष्णा, और ये करते करते उसने गर्भाधान किया था। सो गर्भाधान एज ए संस्कार है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई लोग बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो बच्चा को रिसीव करने से पहले माता और उसको देने से पहले पिता, दोनों को कम से कम 50 राउंड जपा करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का। हाँ उसने कहा था ना, उसने कहा था वो। सो कॉन्सियसनेस इज इम्पॉर्टेंट, ही रिमेम्बर्ड दैट कृष्णस पास्ट टाइम। ओके, आजकल के जो लोग हैं वो तो बच्चा भी नहीं चाहते हैं, उनको तो केवल आनंद भोग करने की इच्छा रहती है, वो तो एक्सीडेंटली बेचारा पैदा हो जाता है। तो अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ लोग पाल देते हैं, नहीं तो कुछ लोग ले जा करके उसको कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, कुछ लोग और कहीं बेच देते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। सो इट्स ए संस्कार। यस गणपति जी के डिपार्टमेंट का एक्चुअली अगर आप जानना चाहें तो बहुत सारे डेमीगॉड्स के डिपार्टमेंट की चर्चा जो है ब्रह्म संहिता में की गई है। ब्रह्म संहिता में कहते हैं गणपति का डिपार्टमेंट है विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत त्रयस्य, इस जगत में भक्तों के रास्ते से विघ्नों को हटाना, इसीलिए उनका नाम क्या है विघ्न विनाशक विनायक, है ना। तो वो विघ्नों को हटाने की शक्ति कहाँ से पाते हैं, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वन्द्वे प्रणाम समयेश गणाधिराजा विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वो क्या करते हैं विघ्नों का निवारण करने के लिए भगवान के चरण कमल को अपने छाती पे धारण करते हैं और इस तरह से भगवान की कृपा से उनको लोगों के मार्ग से विघ्न को रिमूव करने की शक्ति प्रदान होती है। ओके सो ही इज हैंडलिंग दैट डिपार्टमेंट। एनीथिंग एल्स। सभी युगों में माया है। हाँ सभी युगों में माया है। माया भगवान की पुलिस है और जब तक ये सृष्टि रहेगी पुलिस रहेगी। समझ में आया ना। जब जीव माया क्या काम क्या है, जब जीव भगवान को भूल जाता है और भगवान से अलग होकर के स्वतंत्र भोग की इच्छा करता है माया तुरंत उसको पकड़ लेती है। जब तक जीव भगवान के उन्मुख है। हाँ मैं एक्चुअली आज बताने वाला था लेकिन आपको कल बताऊंगा। चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से जीव जो है वो एक बीमारी के स्टेज में है जो मायाग्रस्त है। माया पिसाची की तरह से उसको कंपेयर किया गया है। पिसाच क्या करता है, अगर किसी व्यक्ति को भूत पकड़ लेता तो क्या करता है बताइए क्या करता है। अच्छा है आप लोग को किसी को पकड़ा नहीं है इसलिए अनुभव नहीं है, है ना। आदमी आपे से बाहर हो जाता है। He loses his own control. Somebody else takes up the control of his mind. समझ में आया ना। तो पिसाची की तरह से है माया, जब किसी को ग्रसित कर लेती है तो फिर उसका पूरा कंट्रोल खींच लेती है और वो व्यक्ति जो है भ्रमित हो जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन पिसाच भागता कैसे है, अगर किसी को भूत पकड़ा है तो उसको छुड़ाते कैसे हैं, डंडा मारने से जाता है, मार के छुड़ाते हैं, चाकू मारने से जाएगा, गला दबाने से जाएगा, क्या करते हैं मंत्र जप करते हैं, क्या करते हैं मंत्र जप करते हैं। उसी तरह से माया रूपी पिसाची अगर किसी को ग्रसित करके रखी है तो मंत्र से भागती है वो, और वो मंत्र क्या है, भगवान कहते हैं दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया बहुत शक्तिशाली है। तो जगत में किसी के पास में इतनी शक्ति नहीं है कि माया को हटा दे या माया के चंगुल से बच जाए। माम एव प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी शरण में आता है, एव माम एव भगवान कह रहे हैं, केवल मेरी शरण में जो आता है माया उसको छोड़ती है। क्यों, क्योंकि मैं ऑर्डर देता हूँ माया को इसको छोड़ दे। समझे। तो माया हर युग में है और हर युग में जीवों को पकड़ेगी जब वो कृष्ण से विमुख रहेंगे। एनीथिंग एल्स। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।